ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राजयोग्या एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत आज खुला सत्र विषय है कृषि में आध्यात्मिकता एवं आधुनिकता का संतुलन। तो इस सत्र में जो भाग ले रहे हैं उन सभी अतिथिगणों का मैं दिल से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार बालासो रुगे भाई जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग इचलकरण जी, बीके महेंद्र भाई जी, रुचि एग्रो गोंदिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी जी, जोनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग गोधरा। मैं सबसे आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। आज का विषय है कृषि में आध्यात्मिकता एवं आधुनिकता का संतुलन। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति 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 ही। जैसे आज यह मंत्र जब भी कोई किसी की शुरुआत होती है तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, भले ही कितना ही क्यों ना हमारे पास ज्ञान हो, फिर भी हम उस परम स्रोत से यही कहते हैं कि हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो और हमें ज्ञान अमृत पिलाओ। तो कृषि में आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? अगर हम कृषि में आध्यात्मिकता को ऐड करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा? तो इस विषय के बारे में आज इस खुले सत्र में बहुत सुंदर चर्चा होने जा रही है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी जो परम कृषक, परम पिता परमात्मा, जो सभी आत्माओं का पिता है, इस प्रकृति का परम चित्रकार है, उसकी याद में हम सभी 3 मिनट बैठेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत आध्यात्मिक देश है। भारत का मतलब ही है भा मतलब आभा, रत मतलब निरंतर, जो निरंतर प्रकाश को फैलाता हुआ, जिसको विश्व गुरु भी मानते हैं। अध्यात्म में ही नहीं, अध्यात्म और साइंस में, सब में जो आदि है वो भारत ही है। इसलिए जो देवों के देव, जो कृष्ण के साथ गाय दिखाया गया और बलराम को हल दिखाया गया, मतलब कृषि जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई है। लेकिन आज आधुनिकता में हमने अध्यात्म से हम दूर हुए, इसलिए फिर से उस अध्यात्म की ओर हम कैसे लौटे? इसलिए कहा गया शाश्वत यौगिक खेती का मतलब ही है भौतिक तथा पार भौतिक ऊर्जा के मध्य भावनात्मक संबंध स्थापित कर परंपरागत विधि से की जाने वाली खेती ही शाश्वत यौगिक खेती है। तो इसके बारे में हम आज पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथि गणमान्यों का फूल और बैड से स्वागत करेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, तुलसी के पौधे से स्वागत करें तथा बैड से स्वागत करें। जब धरती में परमात्म शक्ति का समावेश होता है, उस शक्ति का ओज समस्त जीव राशियों को धारण करता है, फलस्वरूप सभी फसलें अमृत रस से संपन्न बन जाती है। तो सभी अतिथि गणमान्यों का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय सुरेखा दीदी जी, जोनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग गोधरा, आदरणीय बालासुरुगे भाई जी, महेंद्र भाई जी, रुचि एग्रो गोंदिया। ऐसे तो बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विद्यालय है जहां हर प्रभाग के लिए अपनी ओर से, अपने तरह से, अपने तरीके से अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। कृषि में अगर हम अध्यात्म को लाते हैं, जैसे कृषि में किसान को हम बहुत प्रमुखता देते हैं, तो जैसे खेती हम करते हैं, बाहर की खेती आज इसलिए बिगड़ी हुई है कि अंदर की खेती बिगड़ी हुई है। अगर हम जब तक अंदर की खेती ठीक नहीं करेंगे, तब तक बाहर की खेती को भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मन का मैलापन जब तक ठीक नहीं होगा, अंदर से स्वच्छ नहीं होगा, जब तक श्रेष्ठ कर्मों के बीज नहीं बोए जाएंगे, परमात्मा ज्ञान सूर्य को याद करके उसकी शक्ति की रोशनी जब तक हम नहीं मिलेंगे, तब तक सुंदर फल रूपी जो सुख शांति है उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकेंगे। तो ये जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य यही है कि हम अंदर की खेती जितनी सुंदर करना सीखेंगे तो प्रकृति को भी हम सुंदर जरूर बना सकते हैं। तो आज के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार बालासो रुगे भाई जी, मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि कृषि एवं आध्यात्मिकता एवं आधुनिकता का संतुलन, बालासो रुगे भाई जी जो शाश्वत योगिक कृषि है इसको बहुत अच्छी रीति से मतलब शुरुआत किया, खुद भी इसके बहुत अच्छे अनुभवी हैं और बहुत नेपाल से लेकर पूरे भारत में ट्रेनर भी हैं, बहुत सारे किसानों को ये ट्रेन कर चुके हैं और बहुत जगह बहुत सारी फसलों पर इनकी आधुनिकता से और अध्यात्म को मिक्स करके बहुत अच्छे सुंदर अनुभव इनके हैं। तो मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि भाई जी आप अपना वक्तव्य रखेंगे। बालासो रुगे भाई जी।
ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय व्यासपीठ, जिसमें अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी सुरेखा बहन जी, भ्राता शैलेंद्र कुमार जी डिप्यूटी डायरेक्टर JIZ यमुनानगर, हमारे वरिष्ठ भाई महेंद्र भाई जी जो रुचि एग्रो से आए हैं गोंदिया से, और आज हम कृषि में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय, इसके बारे में सुनने के लिए एकत्रित हो गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों अलग अलग टॉपिक है, और आज के इस विज्ञान के युग में, आधुनिकता के युग में आध्यात्मिकता को स्वीकार करना इतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वो संतुलन हमारा बहुत ठीक था जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े नहीं थे। उस टाइम हमारे पिताजी ने सिखाया था कि हल चलाने से पहले हल की पूजा करो, बीज बुवाई से पहले बीज की पूजा करो, भूमि पूनम के दिन जमीन की पूजा करो, भैया दोजक के दिन गोबर की खाद की पूजा करो, दीपावली पाड़वा होता है उस दिन गाय की पूजा करो। हम बड़े रुचि से करते थे और इसी को आध्यात्मिकता समझते थे, और दूसरी तरफ आधुनिकता थी। जब हम 1987 में कॉलेज छोड़ के खेती करना शुरू करे तो एक गुनी गोबर की खरीदा मतलब बहुत कुछ हमने खरीदा ऐसे लगता था, और एक गुनी गोबर खाद में, केमिकल खाद में हम लोग एक एकड़ खेती बहुत अच्छी उपजाऊ बनाते थे, और वो आधुनिकता, उसी को हम आधुनिकता समझते थे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर आ गया, अभी हमारा उत्पादन बढ़ गया। लेकिन कालवश पैसे के लालच में आके हमने अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारी उत्पादनता कम हो गई। और 1998 में मैंने नेचुरल फार्मिंग का करने का प्रयास किया, 5-6 मास किया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रही थी। एक साल तक किया और घर वालों की 4 गालियां खा के करना बंद कर दिया, क्योंकि उत्पादन नहीं मिल रहा था। फिर पैसा तो चाहिए था, क्योंकि हमारा एजुकेशन पैसे के बिना अधूरा रह गया था। बच्चों को पढ़ाना और अमीर बनना, ये हमारा लक्ष्य था। और इस सोच के कारण मन में टेंशन बढ़ने लगा। तो एक दिन अचानक ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और उन्होंने हमको सेल्फ पर रियलाइजेशन करवाया, स्वयं का परिचय दिया कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सेकंड में विश्वास हो गया कि मैं कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, आंखों से देखने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा हूं। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्ट था मेडिटेशन सिखाना, और मेडिटेशन में इन्होंने हमको बताया कि परमात्मा भी आत्मा जैसे ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको रियलाइज करना है। गॉड इज द पावर ऑफ रियलाइजेशन। विश्वास ही नहीं था तो करे कैसे? एक तो आत्मा को देखना मुश्किल था, 10-15 मिनट बैठे तो कहां 1-2 सेकंड की अनुभूति होती थी, और इधर परमात्मा की रियलाइजेशन की बातें चल रही थी। लेकिन 6 मास लगातार आने के बाद थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि शांति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तब तक बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में अच्छा आया था। वैसे मैं 1 मिनट में हिस्ट्री बताता हूं, वैसे मेरे 30 मिनट का टाइम है, लेकिन हम जैनियों के एक महावीर के अलावा किसी को नहीं मानते थे। और जब हम ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, घर वाले कहते थे किस सत्संग में जाके है, पहले स्नान करो फिर अंदर आ जाओ। और इसी में मेरी माताजी को रुचि लगी कि तू इतना करके भी रोज जाता है, कहां जाता है, मुझे देखना है। और फिर एक दिन माताजी आ गई, उसका पार्ट पक्का हो गया। उन्होंने कहा मेरे को केवल मेडिटेशन चाहिए, तुम्हारा ज्ञान बिन कुछ नहीं चाहिए। वो आती थी, आधा घंटा बैठ के ध्यान करती थी, हम दोनों वापस आते थे। तो परिवार का एक रिश्ता निर्माण हो गया ब्रह्मा कुमारी के साथ। और 2001 में हम जुड़े हुए थे, 2003 में मेरे को कहा कि भाई साहब आप जिस स्पिरिचुअल पावर को रियलाइज कर रहे हो उसको आपके अपने कर्मों में यूज करना है। मैंने तो कहा मेरी खेती है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? बोला आप यौगिक खेती करो। मैंने कहा ये कौन सी खेती आ गई दीदी, ये खेती खा के घर की घर वालों की गालियां खा खा के थक गया हूं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में मैं फेल हुआ किसान हूं, और अभी यौगिक खेती करूंगा तो और क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जब जबरदस्ती से मैंने कहा कि दीदी आप इतना खेती हो तो मेरी थोड़ी सी खेती में आप करके दिखाओ, मैंने क्या कहा, घर से कुछ दूरी वाली खेती को दीदी को बताया कि यहां आपको एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। मम्मी ने भी सहयोग दिया था लेकिन पापा का सहयोग नहीं था। लेकिन जब वहां करना शुरू कर दिया, ये लोग आते थे हफ्ते में एक बार शाम को बैठ के मेडिटेशन करते थे, और हमारा मेडिटेशन चलता था, पता नहीं सारे लोग देख रहे हैं ये कब उठ के चले जाएंगे। हम निगेटिव सोचते थे क्योंकि इनका यहां खेती में आके बैठना हमको अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरी तरफ देखते थे और लोग मुझे पूछते थे ये कौन से सफेद वस्त्रधारी है और आके खेत में बैठे ये क्या करते हैं। ऊपर से इन्होंने मेरे को खेत में परमात्मा का ध्वज लहराने की प्रेरणा दी थी। हमने ध्वज भी लहराया था तो मेरे पड़ोस वाले पूछते थे कि आप इस किस देश का झंडा लगाया है आपने। जवाब नहीं था हमारे पास, फिर भी जैसे बहने निकल जाती थी झंडा उखाड़ के घर में रखते थे, जिस दिन आना है उस दिन लगाते थे, ये हमारा रूटीन था। लेकिन रिजल्ट को देखकर उस टाइम मेरे पिताजी 92 उम्र के थे, वो घूमते घूमते जाते थे, बोला इस टाइम हमारे गन्ने की फसल इतनी अच्छी कैसे आई है, कौन सी खाद डाली है। तो मैंने फट से बोला ये ब्रह्मा कुमारी बहने आती है और वो ईश्वर का ध्यान करती है, और मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है, लेकिन वो मार्केट से कुछ जैविक खाद थी उसको लाके डाला है। बोला ये कौन से परमात्मा है, महावीर का ध्यान करते है, क्या करती है। फिर मैंने एक दिन बहनों से सेंटर पे लेके मिलाया, दूसरी कोई बात नहीं कही, एक ही बात उन्होंने कही, ये बहनों जो कहते हैं वही आपको करना है, ये आपको अच्छा रास्ता दिखा रही है। और फिर मेरा उमंग उत्साह बढ़ गया। ट्वेल्थ एजुकेशन के बाद आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, चलो एक तो काम करेंगे ऐसा सोच के हमने दिल से करना शुरू किया। अगले साल पूरे खेती में करना शुरू किया और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। पहले तो गन्ने के ऊपर किया था, पानी का TDS 5.2 था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमको बताया था कि आप इसमें खेती नहीं कर सकते हैं, और गन्ने की उपज एक बार करते थे तो लागन की उपज आती थी 35 टन ज्यादा से ज्यादा मीट्रिक टन तक, उससे ज्यादा नहीं, दोबारा गन्ने का खोड़वा नहीं आता था। तो हर साल नए बीज बुआई करनी पड़ती थी, लेकिन हमने वो दोबारा जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने सोचा कि ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और दोबारा हमारे पीछे न पड़े, इसलिए हमने दोबारा जो खोड़वा था उस पर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरणा दी, और उसमें ये रिजल्ट देखकर हमें उमंग उत्साह आया। फिर अगले साल हमने सब खेती में करना शुरू किया, तब जाके मेडिटेशन डीप रियलाइजेशन करना शुरू हो गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों का एक रूल है कि सुबह अमृत वेले जल्दी उठो और मेडिटेशन करो। हमारा 6 बजे मतलब हमारा 4 बजे होता था, 6 बजे उठते तो भी बहुत जल्दी उठ गए ऐसे लगता था, खेती के कामकाज के लिए उठना पड़ता। लेकिन जब हम 4 बजे उठ के बैठने लगे तो धीरे धीरे आदत पड़ गई, और इन्होंने कहा मेडिटेशन मतलब क्या, केवल आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इतना ही हमने समझ लिया था। लेकिन इन्होंने हमने एक एक विधि ऐसी सिखाई, बीज के साथ कैसे बातें करनी है, प्रकृति के साथ कैसे बातें करनी है, फसल के साथ कैसे बातें करनी है, जो जीव जंतु पक्षी प्राणी होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रैक्टिकल की बातें बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी तो बहुत हो गई, हमें प्रैक्टिकल में करना है। क्योंकि यहां से जाने के बाद और लास्ट में ये हमें कंक्लूज लेना है कि आधुनिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता ही आधुनिकता कैसे है, जो टेक्नोलॉजी आज तक किसी भी दुनिया में नहीं मिली और ना ही मिलेगी, इसके आगे की आधुनिकता किसी के पास नहीं मिलेगी, इतनी जबरदस्त आधुनिकता ये आध्यात्मिकता है। हम साधारण समझते थे, लेकिन जब ये रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो हमने दिल से करना शुरू हुआ। सभी प्रकार की खेती हमारे खेत में आती थी, फसल आती थी, उसमें गवर्नमेंट के लैब में टेस्ट भी कर दिया, बड़ा उमंग उत्साह था। उस टाइम 100 ग्राम अनाज का टेस्ट करने के लिए 60,000 रुपये लिए थे पुणे के गवर्नमेंट लैब ने, उसमें प्रोटीन विटामिन कैलोरिक वैल्यूज की मात्रा भी बढ़ गई थी, बहुत सारे कुछ खर्चा हो रहा था। लेकिन नशा था कि इस मेडिटेशन को सिद्ध करके बताना है। फिर हम एक एक विधि आध्यात्मिकता की कैसे आधुनिकता है इस पर फोकस करते हैं। पहले तो इन्होंने हमें बताया कि अपने देह के साथ बातें करो, शरीर के साथ बातें करो। आत्मा अलग चीज है, देह अलग चीज है। आत्मा एक गाड़ी ड्राइवर है, देह एक गाड़ी है। तो उन्होंने हमको बहुत प्यार से समझाया कि आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाना है। ये देह तो 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। रोज हम इससे लेते हैं, जमीन से अनाज लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से पानी पीते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, तभी ये शरीर तंदुरुस्त रहता है। गाड़ी में तो पेट्रोल डाला पर ड्राइवर को कुछ नहीं मिल रहा था, ड्राइवर भूखा कब तक गाड़ी चलाएगा। दीदियों ने बताया कि आपको शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, वो केवल मेडिटेशन में मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है। तब हमने मेडिटेशन में आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया, और बहनों ने बताया कि इन्हीं शक्तियों को आप प्रकृति को भी योगदान देते चलिए। मैंने कहा योग और दान क्या होता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति गुजर जाएगा, देह छूट जाता था, तो हमें खड़ा कर देते, स्तब्धता रखो, उस आत्मा के प्रति शांति का दान दे दो। उस टाइम ये भी पता नहीं था कि शांति क्या होती है और दान कैसे करना है, बस सबके साथ हम खड़ा होकर कुछ तो मन में संकल्प करते थे कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन शांति रियलाइजेशन की बात मेडिटेशन में हुई है, और हम लोग प्रकृति को आज जो शांति का योगदान देते हैं, जमीन को भी योगदान देते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि साल में एक बार जमीन की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, साल भर जहर खिलाते हो तो आप पूजा करना बंद कर दो, लेकिन उस धरती माँ को जहर खिलाना बंद करो, और रोज उसको 10 मिनट शांति का, शक्ति का, प्यूरिटी के वाइब्रेशन देने का प्रयोग शुरू कर दो। मैंने कहा थोड़े ही इसको समझता है कुछ जो हम वाइब्रेशन देवे, ये तो मुर्दा है। लेकिन बहने कहते इसलिए करना शुरू किया, परमात्मा की याद में हम एक आत्मा शांत स्वरूप है, मेरे से परमात्मा से आने वाली शांति की किरने मेरे से निकल पर पूरे खेत में बारिश के जैसे किरने उतर रही है, और मेरी जमन एकदम शक्तिशाली बनती जा रही है। बस यही पागलपन की महसूसता हम करते थे, लेकिन आगे चल के उसमें बहुत चमत्कारिक परिणाम हमको दिखाई दिए और मन रह नहीं गया। तो हमने कुछ किताबें पढ़ना आदि शुरू किया, उसमें एक किताब मेरे को मिली जो रुडॉल्फ स्टीनर नाम का वैज्ञानिक था, बायोडायनेमिक खेती पद्धति, जिसको जैव ऊर्जा खेती पद्धति बोलते हैं। तो उसमें रुडॉल्फ स्टीनर ने स्पष्ट लिखा है, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है तो जब तक आप ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था, ब्रह्मांड की शक्ति है क्या? बहुत प्रयास किया, लास्ट में हमको डॉक्टर आर के पाठक जी जो बायोडायनेमिक खेती का प्रचार और प्रसार कर रहे थे पूरे भारत में और भारत के बाहर 65 कंट्रीज में, 3-4 बार उनसे मुलाकात हो गई और लास्ट में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ब्रह्मांड की शक्ति को इस्तेमाल करने का सही तरीका है भारत का प्राचीन योग जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, और वो हमने ब्रह्मा कुमारी से सीखा था। लेकिन हम ये किसी को नहीं बता सकते थे कि ब्रह्मा कुमारी का संस्थापक परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता है तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, और कह भी नहीं सकते। केवल हम मान रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, ब्रह्मा के तन में आता, इतना ही मान रहे हैं। लेकिन हमें लोगों को, जो मुझे पागल समझते थे, उनको बताना था कि भगवान साइंटिफिक रीति से कैसे हम बताएं उनको। तो बहुत प्रयास के करने के बाद मेरे के सामने एक किताब आई जिसमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पर पीएचडी की थे डॉक्टर एलएस माथुर, जिन्होंने लंदन में पीएचडी की थी, और उनकी कुछ नोट्स मेरे हाथ में आए, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया था परमात्मा का। परमात्मा कौन हो सकता है, परमात्मा किसे कह सकते हैं? उन्होंने आत्मा का भी परिचय दिया है आइंस्टाइन ने, और परमात्मा का भी परिचय दिया है। हम केवल इतना ही जानते हैं इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बट आइंस्टाइन ने इससे आगे जाके बहुत कुछ बताया है, और वो सीखना हमें जरूरी थी जो इस किताब में मैंने पढ़ी। और आज आपको बताता हूं, आइंस्टाइन ने स्पष्ट कहा है इस सारे सृष्टि को चलाने वाली एक ऊर्जा है जिसको वैश्विक शक्ति कहते हैं या कॉस्मिक पावर कहते हैं, और उस ऊर्जा का स्रोत आउटसाइड द यूनिवर्स देयर इज ए पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट को हम परमात्मा कह सकते हैं। तो उसी पॉइंट से हम मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन में, और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाकर श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों के साथ हम जमीन को प्रवाहित करते हैं। इसी को योग के प्रयोग कहते हैं। अब जब जमीन को प्रवाहित करते हैं तो क्या बदल आता है? हमारे वाइब्रेशन जैसे ही जमीन को अंदर वाइब्रेट करते हैं तो जमीन के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं उनको प्रेरणा मिलती है। अब कैसे आप कहेंगे, 20 साल पहले अगर ये पागल आपके सामने खड़ा होकर आपको बताता था कि 20 साल बाद आपके जेब में एक मेटल की डिब्बी आने वाली है और सब लोग उस मेटल की डिब्बी कान को लगाकर बोल सकते हैं, सब लोग यहां से बैठ के अपने रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, सब लोग यहां बैठ के घर का लाइट बिल आदि भर सकते हैं, तो आप लोग उस समय मेरे ऊपर हंसी मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन आज वही मेटल की डिब्बी सबके पॉकेट में है जिसको हम आधुनिकता कहकर उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो आधुनिकता हमारे पास भौतिकता की आई है, ठीक इसी तरह यहां से निकलने वाले वाइब्रेशन हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन सैटेलाइट के पास जाते हैं, टावर हाउस के पास जाते हैं, टावर हाउस सैटेलाइट के पास पहुंचता है, वहां से जिनका नंबर डायल किया है वही तक हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं। जैसे ये एक साइंस है, सेम एज इट इज हमारे विचारों के जो प्रवाह है वो भी हम जिसके प्रति चलाते हैं वहीं पे जाके अपने प्रभाव दिखाते हैं, और हमारे इन विचारों की शक्ति को कोई भी विद्युत चुंबकीय शक्ति भी रोक नहीं सकती है। इतनी प्रखर ताकत हमारे विचारों के तरंगों में है, इसलिए जो हम जमीन को योगदान देते हैं इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी बात है, जो बीज हम बुआई करते हैं उसको सामने रखते हैं। पहले तो हम करते थे विधि, थोड़ा बीज लेते थे, उसकी पूजा करते थे, नारियल चढ़ाते थे, सारे बीज थोड़े से वो बीज सारे बीज में मिक्स करके फिर खेती में बुआई करते थे। लेकिन आज जितने बीज बुआई करते हैं वो सामने रखते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा की वो शक्ति मेरे अंदर आ रही है और मेरे से एक एक बीज के अंदर उतर रही है, एक एक बीज लाल सुनहरा चमक रहा है, और उस समय हम उस बीज को एक विचार देते हैं कि आपको निरोगी और शक्तिशाली पौधों का निर्माण करना है। सिंपल थॉट है लेकिन बहुत चमत्कारी है। पहले वाले किसान अनपढ़ थे लेकिन पक्के वैज्ञानिक थे, जिनके पास भावना थी, वो भावना से उसके साथ रिश्ता जोड़ते थे, तभी उस बीज की पूजा करते थे और फिर बुआई करते थे। लेकिन आज हमको विज्ञान समझ में आ गया, लेकिन इसलिए हम पूजा से विधि नहीं लेकिन भावना से विधि को विधिवत करके उसको चार्ज करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, सबसे पहले एसडी एग्री यूनिवर्सिटी में हुआ, वहां के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर भारत की पहली एग्री यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में जो है गोविंद वल्लभ पंत पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहां के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा अगर विचारों के इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो क्यों नहीं हम अलग अलग तरीके से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो उन्होंने सीड्स के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। दो साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, पुराने बीज, नए बीज, बहुत सारे बीज कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे वैरायटी से किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाइब्रेशन दिए थे, मेडिटेशन के दिए थे, म्यूजिक के दिए थे, कंट्रोल में रखा था। और इतना सब करने के बाद उन्होंने लास्ट कंक्लूजन ये दिया था कि ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन थ्रू जो रिजल्ट मिला वो 8% जर्मिनेशन पावर ज्यादा मिल गई है। इसका रिसर्च डाटा इंटरनेशनल जर्नल्स में 2016 में पब्लिश हो चुका है, जुलाई 2016 में। और तब हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तब तक मेरे सामने एक अंग्रेजी मैगजीन आया, अंग्रेजी तो इतना नहीं आता था, किसी से पढ़कर हमने उसका अर्थ निकाला तो आधुनिकता क्या है हमने समझ लिया। उस मैगजीन में चाइना के एक्सपेरिमेंट थे। चाइना वाले क्या करते हैं, बीज को रॉकेट में भरते हैं और रॉकेट को स्पेस में उड़ाते हैं, कुछ समय वहां रखते हैं और वहां से नीचे बीज लाते हैं, उसकी बुआई करते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन पावर 10% तक बढ़ के मिली उनको। क्या यह संभव है हम सभी को कि हम बीज में रॉकेट में भरे, रॉकेट को स्पेस में उड़ाए, ये आधुनिकता कहां तक कर सकते हैं? लेकिन ये आध्यात्मिकता ही इससे बड़ी आधुनिकता है। कैसे हम लोग उस स्पेस से ऊपर जो परमात्मा है उनको नीचे खींचकर, उनकी ताकत को नीचे खींचकर, संकल्पों के माध्यम से हम अपने बीज को चार्ज करते हैं तो उसकी पावर, जर्मिनेशन पावर 10% ज्यादा बढ़ गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सस्ती वाली है, आधुनिकता वाली है, भौतिक आधुनिकता वाली है या आध्यात्मिकता की आधुनिकता वाली है? क्या कह सकते हैं आप? आध्यात्मिकता की आधुनिकता वाली टेक्नोलॉजी सस्ती तो सब किसान कर सकते हैं, चाहे गरीब है, चाहे श्रीमंत है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, सब कर सकते हैं। केवल जरूरत है भावना से जुड़ने की। और ये सीड ट्रीटमेंट जो है वो हम अभौतिक रूप से करते थे, मेटाफिजिकल ऊर्जा कहते हैं उसको, उसी से तो करते थे। लेकिन साथ साथ हमको जमीन की उर्वरक शक्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए कुछ फिजिकल विधि भी बताई जिसमें बीजामृत का हो या और जो भी विधि है वो भी हम भौतिक विधियां भी करते थे, क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। न केवल स्पिरिचुअलिटी सर्वस्व है, न केवल विज्ञान सर्वस्व है। आइंस्टाइन ने कितने साल पहले यह बता के रखा है कि जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर काम करेंगे तब एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो हम स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ रहे हैं या तो फिर भौतिकता की तरफ मुड़ रहे हैं। जरूरत है दोनों का समन्वय करने की और हम लोग इसी से हमें सफलता मिल रही है। तीसरी बात है, हम प्रकृति एक एक तत्व को भी योगदान देते हैं, जल तत्व को भी योगदान देते हैं और उससे बहुत अच्छे परिणाम हमको मिल देते हैं। मेरे पानी का TDS 5.2 होते हुए हम खेती में करते थे, दीदी हमको इतना ही बोलती थी कि पानी को चार्ज करो, पानी को चार्ज करो। एक दिन दीदी ने हमको दिया एक किताब हाथ में, वो मसारू इमोटी की थी, जापान के कुछ साइंटिस्ट थे, और हमने पढ़ा कि एक ग्लास में आई लव यू लिखा था, एक ग्लास में आई हेट यू लिखा था। सब जाके उसके सामने पढ़ते थे और पढ़ने के बाद लास्ट कंक्लूजन उन्होंने माइक्रोस्कोप के दिखाया कि जिस पर आई लव यू लिखा था उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स डायमंड जैसे चमक रहे थे और जिस पर आई हेट यू लिखा था उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स काले काले हो गए थे। अब हम कैसे विश्वास रखें? लेकिन भगवान की कृपा, 2019 में खुद वो जापान की टीम हम किसानों को मिलने के लिए माउंट आबू आई थी, यहां से लेके वो हमारे गांव आ गए, उधर पुणा में भी आ गए, हमारे किसानों को मिला और कहा कि आप लोग करते क्या हो बताओ। साथ में मशीन भी लाई थी उन्होंने और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ रॉक म्यूजिक भी बता के वो भी प्रयोग करके दिखाए, हमारे मेडिटेशन की भी करके दिखाए और प्रेयर के भी करके दिखाए। और उन्होंने जिस पानी को हमने मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट वाइब्रेशन दिए थे उस पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स डायमंड जैसे चमक रहे थे, जब प्रैक्टिकल में हमने देखा तब हमारे ऊपर का विश्वास और बढ़ गया हमारा, और दूसरा परमात्मा के ऊपर का विश्वास और बढ़ गया। विश्वास बात इसलिए कह रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जितने भी जुड़े हैं ना, वो एक भी बंदा किसी के कहने से नहीं आता है, केवल रियलाइजेशन के आधार से आता है, महसूसता के आधार से आता है। यहां आने के बाद कोई ना कोई वो महसूस करता है तभी यहां आता है, वरना किसके पास टाइम है ये फालतू आत्मा और परमात्मा सुनने के लिए। हर एक कोई को न कोई को महसूस कर रहा है, अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए कहो या अपने जीवन में आने वाली समस्या को ठीक करने के लिए, तभी यहां पे रेगुलर सफेद ड्रेस और बैच लगा के आता है। वरना ये बैच और सफेद ड्रेस गंदे होते कौन पहनाएगा, कलर कपड़े पहनाऊंगा तो धोने के लिए और अच्छा सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये आने का, यहां आने वाले जितने भी दिखाई दे रहे वो सब महसूसता की शक्ति के आधार से यहां आते हैं और हम लोग उस टाइम हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जल तत्व मतलब पांच तत्वों को भी हमारे भावनाओं का असर होता है, न केवल जीव जंतुओं के ऊपर होता है लेकिन ये जो जड़ मैटर है इसके ऊपर भी हमारे विचारों का असर होता है। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल में जब देखा तब हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तीसरी बात आती है, हम लोग खेत में जो फसल उगती है उसको रोज मेडिटेशन के वाइब्रेशन देते हैं और मेडिटेशन में एक ही संकल्प करते हैं कि आपको निरोगी और शक्तिशाली होकर बढ़ना है। अब जैसे इंसान के साथ बात करते हैं ऐसे पेड़ पौधों से भी बात करते हैं। मन में कभी कभी हंसी आती थी लेकिन अचानक एक दिन मेरे को याद आया जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो ये किताब आई थी मेरे पढ़ने में, उसमें एक मराठी में लेसन था सर जगदीश चंद्र बोस जी के नाम से और वो मुझे याद आया। तब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री वो किताब बड़ी किताब खरीद के मैंने पढ़ी और उसके साथ कई किताबें मिली, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की मिली, लूथर बर्बैंक की मिली, क्लीव बैक्स्टर की मिली, चार्ल्स डार्विन की मिली, कितने नाम बताओ जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कमाया है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आज का विज्ञान उन लोगों ने जो स्पष्ट किया है उसके आगे फीका है, क्योंकि आज का विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान है। उन लोगों ने आध्यात्मिकता को विज्ञान के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया था, इसलिए उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और वो जो विज्ञान है वो विज्ञान अगर आज के विज्ञान के साथ जुड़ जाएगा तो किसान उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो हमने प्रैक्टिकल में किया है। तो जब हमने ये पेड़ पौधों के साथ बात करते हैं तो हमारा असर कितना अच्छा होता है ये प्रैक्टिकल में हमने देखा। फिर करते गए, एक तरफ केमिकल फर्टिलाइजर डाल के जो प्रोडक्शन आ रहा था शुरू में एक दो साल हमका प्रोडक्शन कम रहा था, लेकिन जब बाद में पता चला कि हमारे जमीन का ओसी, ये भारत सरकार ने जब ये निकाला ना सॉइल हेल्थ कार्ड तो हमें पता चला था, लेकिन उससे पहले अगर भारत सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड निकाल सकती तो हम हंसी मजाक उड़ा सकते थे, ये क्या नई टेक्नोलॉजी निकाली है, सरकार को कोई काम नहीं है ऐसे कर सकते थे। लेकिन जब निकाली तब हमने ऑलरेडी समझ लिया था, हमने हजारों किसानों को प्रेरणा दी कि आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड निकालो, जमीन की ताकत देखो, जब तक जमीन की ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक आप कितना भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो कोई फायदा नहीं होगा, जमीन में पड़ा रहेगा, पानी के साथ बह के जाएगा। लेकिन जब आपकी जमीन का ओसी बढ़ जाएगा तब उसके अंदर की बायोडायवर्सिटी जो है जैव विविधता वो काम करने लगती है और करीब 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब यहां पे आती है आधुनिकता, हम लोग पेड़ के ऊपर कीड़ आते हैं तो ऊपर से दवाई स्प्रे करते हैं, भगवान ने जमीन के अंदर लाखों करोड़ जीवाणुओं को जन्म दिया है जिसमें कई सारे जीवाणुओं का नामकरण वैज्ञानिकों ने किया है लेकिन कई सारे बैक्टीरिया के जिनका नामकरण अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसे हजारों सैकड़ों बैक्टीरिया है। हम केवल इतना ही जानते हैं एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, पीएसबी कल्चर और कीट को कंट्रोल करना है तो जानते हैं मेटेरिज्म है, बिवेरिया है, वर्टिसिलेम है, फंगस को कंट्रोल करना है तो सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा इतना ही जानते हैं, लेकिन और बहुत सारे जीवाणु हैं। जब जमीन का ओसी बढ़ता है तो जमीन में ये जो दुश्मन कीट होती है चाहे दीमक हो, हुमनी, उदई, व्हाइट ग्रब, जो भी है, कीट को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी भगवान ने उस मेटेरिज्म बिवेरे के ऊपर दी थी और जमीन से जैसे ही वो केमिकल का गैर इस्तेमाल करने से जमीन का उसी कम हो गया, वो खत्म हो गए और फिर हमें ऊपर से दवाई मारने का काम करना पड़ रहा था। लेकिन जब से हमारा जमीन का ओसी, अभी तक मेरे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन मेरा जमीन का ऑर्गेनिक कर्ब स्टेबल है 1.6 के आगे, 1.6 के नीचे कभी नहीं आया है। और वो जब ये मेरी असली प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने आने वाली पीढ़ी को साबित रखी है, बैंक में कितना पैसा ये नहीं बताऊंगा लेकिन मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, मेरा ओरिजिनल जमीन की ताकत जो है वो 1.6 तक गई है और इसमें हजारों लाखों करोड़ों जीवाणु हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं फसल की ग्रोथ के लिए, पेस्ट और डिसीज कंट्रोल के लिए, उनकी जिम्मेवारी भगवान ने उनको दी है। दूसरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं या आप भले इसमें किसान हो या कुछ कृषि अधिकारी हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन आपके हाथ में पूरे विश्व का नक्शा बदलने की ताकत है, साधारण नहीं है हम लोग। ये विधि अगर किसान सीख जाए ना पूरे विश्व की समस्या ठीक हो जाएगी, यह अकेला किसान कर सकता है ना कोई कर सकता है। और वो कैसे मैं बताऊंगा, पानी का प्रश्न इतना बढ़ता जा रहा है, लोग तो वो पानी फाउंडेशन के नाम से कितना करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो खर्चा मत करो भाई, जमीन के अंदर केंचुओं को जिंदा रखो, वो दिन में 25-30 बार ऊपर नीचे करते हैं, हमारे खेत में इतनी बारिश होती है लेकिन खेत का पानी बह के पड़ोस वाले खेत में नहीं जाता है, दूसरे के खेत का पानी बह के मेरे खेती में आता है लेकिन हमारे खेत का पानी अभी तक बाहर नहीं गया है। जैसे ही बारिश होती है केंचुए सारे ऊपर के लेयर में आते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये भगवान की देन है। प्रकृति की जो रचना है उसमें बिगाड़ करना मानव बुद्धिमत्ता को शोभनीय नहीं देता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत डेंजर होगा। तो जमीन को जिंदा करके अगर हम जमीन के अंदर केंचुओं को बढ़ा देंगे तो इससे बेनिफिट बहुत अच्छा होने वाला है, पानी की समस्या मिट जाएगी। पानी का जो टीडीएस बढ़ता जा रहा है उसको कम करने की ताकत पानी के जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर है, वो टीडीएस भी कम करके देते हैं। हमें यूरोप से और जापान से कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं टीडीएस कम करने वाली, हमारे पास वो है साइट्रिक एसिड या बैक्टीरिया। मैंने एक बार फैक्ट्री से खरीद के खेत में छोड़ा था, मुझे दोबारा पता चला कि खेत में आप भाई साहब केवल देसी गाय का गोबर डालते चलो वो नेचुरली पैदा हो जाते हैं। मैंने कहा नेचुरली कैसे पैदा होंगे? उसने मुझे आराम से बताया कि भाई साहब जब कोई जानवर मरता है तो उसको खाने वाली कीट जैसे नेचुरली वहां आती है, ऐसे आज जो खेती में बीमारियां बढ़ रही है वो धीरे धीरे जमीन की ताकत कम होने से अपायकारक जीवाणु बढ़ गए और बीमारी बढ़ गई। ठीक इसी तरह जैसे आप गोबर की खाद इस्तेमाल करोगे उसी बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार मित्र कीट बढ़ते जाएंगे और आपकी सारी समस्या ठीक होगी। हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि ये भी हमारी समस्या। अभी मेरे कुएं का जो पानी है उसका टीडीएस ईसी 5.2 था, अभी वो 2700 तक आ गया 2700, और वो पानी हम खेत को पिलाकर हमने हमारी उधर निर्वाह चल रही है अच्छी तरह से। और इस योगी खेती की विधि से जहां हम 35 मेट्रिक टन गन्ने का उत्पादन लेते थे आज हम 45 मेट्रिक टन तक पहुंच गए हैं। हमारे दूसरे किसान जो है वो भले पहुंचे 45 से आगे क्योंकि उनका पानी अच्छा है, लेकिन मेरा पानी इतना अच्छा नहीं है फिर भी हम 45 टन ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा जो शुगर की मात्रा है उसमें वो बहुत बढ़ गई है। वैसे शुगर फैक्ट्री में जो निकालते रहे उसकी रिकवरी कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 तक होती है। लेकिन हम किसान जो योगी खेती कर रहे हैं हमारी मैक्सिमम मिनिमम लेवल जो है वो है 14% रिकवरी हमें मिल रहे हैं। अभी हम यहां आने से पहले 9 मास का गन्ना था मेरा, मैंने कहा अभी रखूंगा तो चूहे डिस्टर्ब करेंगे बाद में कोई समस्या आएगी, इसलिए 9 मास का गन्ने की कटाई करके हमने उसका गुड़ बनाया। 12% रिकवरी मिली मुझे, 1 टन गन्ने की कटाई करने से 120 किलो गुड़ मिल गया। और वो 100 किलो गुड़ हमने 1 किलो गुड़ बनाने के लिए मुझे 30 रुपये प्रति किलो खर्चा आ गया। अब 30 रुपये किलो खर्चा आया तो मैं बिक रहा हूं 80 रुपये किलो से, अब 120 किलो का टोटल उत्पादन कितना हो गया। इधर हमारे किसान लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं 35 रुपये रेट मिलने के लिए, और हम लोग यहां गुड़ बेच के रेट मिल रहे 5000 रुपये प्रति टन का। तो मार्केट में भी कल के सेक्शन में भी आपका होगा ये, तो सभी समस्याओं का समाधान है। किसानों के जीवन में सबसे पहली समस्या है कि उसका उत्पादन खर्चा बढ़ रहा है। हम लोग किसानों को पूरा खाद बनाने की विधि है वो घर में बनाने की विधि सिखाते हैं, चाहे नेचुरल यूरिया हो चाहे नेचुरल डीएपी हो। हम लोग छाट से नेचुरल यूरिया बनाते हैं, सोयाबीन से नेचुरल डीएपी बनाते हैं, जिसका प्रूफ हमें ऋक्षायुर्वेद के ग्रंथों में मिला है, ज्ञानेश्वरी के कृषि दर्शन में हमें मिला है। ये इंसान के दिमाग की बात नहीं है, 800,000 साल पहले जिन संतों ने तपस्या करके अपने किताब में लिख के रखी है वो बातें हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, तो हमको ये रिजल्ट इतनी अच्छी मिल रही है। और ये जब विधि हम किसानों को बेसल डोस हम घर के में बनाते खरीद के नहीं लाते हैं, और जब ये करते हैं तो हमारा खर्चा कम होता है। दूसरी बात, स्प्रे के लिए हम दवाइयां भी घर में बनाने की विधि सिखाते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी भी दवाई हम घर में बनाते हैं। अभी एक किसान हमारे यहां कहते थे कि भाई स्प्रे के लिए हमको बोला है ये 52-34 का खाद स्प्रे करने के लिए कहा है। मैंने कहा 52-34 बनाने की विधि भी मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन थोड़ी सी केमिकल होगी। अब एक बार उन्होंने हमको उनको सिखाया हमने कि बाबा फॉस्फोरिक एसिड ले लो, थोड़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, दोनों मिला के पानी में कैसे मिलाना है बताया। उन्होंने करके देखा तो रिजल्ट पक्की मिली, वही यूज करने लगा। मैंने कहा दोबारा यूज मत करो, पाप लग जाएगा तुमको। एज अ टॉनिक के रूप में आप यूज कर सकते हो, बट फर्टिलाइजर के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये विधि हम अपना के आज जो हम प्रैक्टिकल में करें, जैसे ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड का भी फॉर्मूला अलग बात है, लेकिन हम लोग चावल के धान के चावल जो होती है ना चावल से हम लोग ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, सोयाबीन से हम लोग अमीनो एसिड बनाते हैं, सिलिकॉन जैसी जो ये स्टिकर होता है ना वो भी हम घर में बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सारी विधि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से किसानों के मुफ्त में सिखाई जाती है, इसलिए उसका प्रोडक्शन खर्चा जो है वो कम होता है। दूसरी बात है लेबर नहीं मिलते हैं, लेबर का प्रॉब्लम भी इन्होंने सॉल्व करने की सिंपल विधि बताई। एक बार ये बहने हमारी खेत में आई थी, उन्होंने कहा मेड़ के ऊपर झाड़ लगाओ सरे। मैंने कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पागल है क्या? 1985 में उन्होंने पूरा प्लान निकाला ना कि बांध स्वच्छता मुहिम में सब पेड़ काटने के लिए कहा था, हमने काटा और तुम कहते हो मेड़ के ऊपर पेड़ लगाओ। तो इनके आगे कोई जा नहीं सकता था बहनों के आगे, तो हमने लगाने का शुरू किया। आज वो पेड़ इतने बड़े गए हैं जितने कई सारे पंछी आके बैठे। बाद में मुझे एक किताब मिली वनस्पतियों का विचित्र विश्व, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी किताबें आई, और उसमें जब हमने पढ़ा तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक किताब में लिखा था, अगर पश्चिम दिशा में एक नीम का पेड़ होता है और उसमें बहके हवा खेत में आ जाती है तो 250 प्रकार के वायरस को कंट्रोल करने की ताकत केवल एक नीम के पेड़ में है। और वहां तो हमने नीम के लगाए, करंज के लगाए, बरगद के लगाए, पीपल के लगाए। और 4-5 साल आगे चले गए, फिर ब्रह्मा कुमारियों ने कहा कि हमको, भाई आप तो जी रहे हो आराम से, पंछी प्राणी कैसे जिएंगे। मैंने कहा ठेका मैंने उठाया है थोड़ा। बोला भगवान का ठेका भगवान ने उठाया, लेकिन तूने जंगल तोड़ के ये क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने थोड़ी ही जंगल खत कर आए, तो एग्रो फॉरेस्ट वालों ने किया है। बोला आपका भी हिस्सा है, आप बाकी मत बोलो, आप अपने खेती में से थोड़े हिस्से में थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट बनाओ। बोला करना क्या है बताओ। तो उसने कहा था 5000 स्क्वायर फुट एरिया अपनी जमीन नहीं है ऐसे समझो और घना जंगल बनाओ, उसमें बरगद नीम पेड़ फल पौधे सब लगाओ। मैंने भी कहा सचमुच भगवान के बारे में हम लोग लेयर्स गए तो 5000 स्क्वायर फुट से क्या होता है। मैंने 30000 स्क्वायर फुट में पूरा जंगल बना दिया, उसमें पीपल के पौधे, नीम के पौधे, करंज के पौधे, बेल के पौधे सब लगा दिए हैं। अब मेरी खेती इंडस्ट्रियल एरिया में आएगा इछलगंजी सिटी में, लोग हंसने लगे, जहां 2500 रुपए स्क्वायर फीट से जमीन बिक रहे वहां तुम ये क्या पेड़ पौधे लगा के ध्यान करते बैठते हो। मैंने कहा पागल कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे पागल बनाया इतना मैं आपको बता सकता हूं। और वो बनाया, आज वहां इतने पंछी और पानी आके बैठे हैं। 3 साल पहले हमारे यहां बहुत सारे लोग आ गए, यूनाइटेड नेशन के कुछ साइंटिस्ट आ गए थे, उस टाइम उन्होंने उसको यूनाइटेड नेशन में शामिल कर दिया बायोडायवर्सिटी के नाम से। और जब हैदराबाद में 2011 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस मिली थी तो बायोडायवर्सिटी के नाम से उन्होंने फर्स्ट प्राइज ब्रह्मा कुमारीज को दिया था। कि ऑल ओवर अगर सोचा जाए, कोई क्या कर रहा था, टाइगर को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई गीत को बचाने की कोशिश कर रहा था, स्पेशल दिखाने के लिए काम चल रहा था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने एक जंगल बना के कितने सारे जीव जंतुओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। और इतनी 300 करोड़ सिक्योरिटी के लिए खर्चा हुआ था, सारी सिक्योरिटी तोड़ के वो रशिया से आए, उनके अध्यक्ष ब्रह्मा कुमारी की संस्था में आके उन्होंने फर्स्ट प्राइज देके गए थे। और तब हमें पता चला कि हम जो कर रहे हो प्रकृति के नियमों अनुसार कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कई सारे लोग आए, फिर 3 साल पहले हमारे एक पूसा इंस्टीट्यूट से कुछ लोग आए थे साइंटिस्ट 10-12 लोग, वो तो पूरा हंसी मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या पागलपन है जंगल बना के रखा है, वो किया ये किया। अब हमारे अंदर भगवान ने जो मेडिटेशन करते उसे सहन शक्ति इतनी अच्छी दी है कि हम जो भी बोलता है ना अच्छाई के लिए बोलता है ऐसे समझते हैं। सर अंदर तो आइए, सर अंदर तो आइए। तो जैसे ही अंदर आ गए उन्होंने देखा वहां की महसूस था कि जमीन के अंदर देखा, सर जमीन इतनी भुरभुरी कैसे है। बोला मैंने वो तो भुरभुरी है, थोड़ा मिट्टी हाथ में तो लग के रखो। हाथ में लिया फिर ऐसे देख रहे थे उसको स्मेल आने लगी, नाक को लगाया तो पागल जैसे सबके नाकों में लगाने शुरू कर, 10-12 लोग थे साइंटिस्ट थे, सबके एक दूसरे के नाक को लगा रहे थे, सूंघ के देखो कितनी अच्छी स्मेल है। मैंने कहा केवल सूंघने की बात नहीं, जहां से मिट्टी उठाए वहां नीचे क्या दिखाई देता है देखो। तो नीचे 1 इंच मिट्टी खोदते ही फर्क 1 इंच में दिखाई देने लगे। मैंने ये जो अग्रे फॉरेस्ट दिखाए वहां कितने पंछी के घोंसले दिखाते, कितने मधुमक्खियां दिखाई देते, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए सर। तो उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट स्पिरिचुअलिटी इन एग्रीकल्चर के टॉपिक से उन्होंने डिप्लोमा के बच्चों के लिए सिलेबस बना के देने के लिए कहा, वो तो बना के दिया, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों के लिए भी सिलेबस बना के दिया। अब वो नीति आयोग जब पास करेगी तब की बात है, लेकिन नीति आयोग पास करने के लिए उनके सामने बहुत लोग बैठे हैं, ब्रह्मा कुमारी जैसे कई लोग हैं, ये इतना संभव नहीं है। लेकिन कहने की बात है कि आप भी अपने खेत में एक बायोडायवर्सिटी बनाओ। और इसका साइंस मैं अभी आपको बताता हूं। एक एक पेड़, हमारे ज्ञानेश्वरी का कृषि दर्शन बनाया है उसमें उन्होंने लिखा है बरगद का पेड़ बनाया, आपकी मानसिकता विचलित होते हैं तो बरगद के पेड़ के जाकर आलिंगन दे दो या उसके पेड़ के नीचे बैठ के ब्रीदिंग करो, आपका मन विचलित नहीं होगा, मन की बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको कोई वायरल इंफेक्शन की बीमारी है तो नीम के पेड़ को आलिंगन दे दो या वहां बैठ के ब्रीदिंग करो। आपको हार्ट की बीमारी है तो पीपल के पेड़ को आलिंगन दे दो। आपको नींद नहीं आती है तो आम के पेड़ को आलिंगन दे दो। अब ये साइंस हमको कहां पता था, हम तो अधीनता उसको समझता था कि मेरे खेत से 50 फुट दूरी के बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, आईसीयू बेड बनाया है। मैंने तो सोच लिया था कब भी अटैक आएगा तो आईसीयू नजदीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन जैसे ही कोरोना आया वो डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बेड चिल्लक नहीं है। मैंने कहा ये कौन सा हॉस्पिटल आया। और वहां के मरीज जब खेती में आके बैठते थे तो वो ठीक होने की महसूसता कर देते। तो मैंने जो अपने लिए आईसीयू बेड बनाया वो अपने खेत में बनाया है और वो मेरे लिए आधुनिकता है। वहां जाके अगर बैठता हूं तो मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक होने के लिए मदद करता है। और न केवल मैंने वो अपने लिए रखा है, सबके लिए खुला रखा है, कोई भी आके वहां मेडिटेशन कर सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है। तो केवल ये अपने लिए नहीं, यहां से जाने के बाद मैंने किसी के नाम से 5000 स्क्वायर फुट जमीन बिकी ऐसे समझ के उसमें कुछ पंछी प्राणियों का आश्रय स्थल बढ़ाओ। सुबह सब्जेक्ट चल रही थी जय विविधता की, जैव विविधता के बिना खेती संभव नहीं है भाई साहब। जब तक ये पेड़ पौधे नहीं है ना, वो संभव ही नहीं है। हम जिसको प्रगत राष्ट्र बोलते हैं चाइना के, 1956 की बात है जब चाइना ने, उनके अध्यक्ष बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक चिड़िया दाना खा के इतना मेरे देश का नुकसान कर रही है, तो उन्होंने ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकला एक चिड़िया साल में 4.5 केजी अनाज खराब कर देती है। ऑर्डिनेंस निकाला पूरे देश की चिड़ियों को खत्म कर दो, एक साल में सारा खत्म कर दिया। 1958 में अनाज के ऊपर जो आने वाली कीड़ थी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 1959 में भी वही बात हो गया और 1960 में 3 करोड़ चाइना की आबादी भूखे मर गई थी। ये सत्यता की कहानी है। अब जब उन्होंने इतना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, लेकिन पेस्ट कंट्रोल नहीं हो पाई थी, तब उन्होंने भारत के सामने और मॉरिशस के सामने भीख मांगी कि हमको चिड़िया दे दो, और यहां से चिड़िया करके उन्होंने अपने देश में बढ़ाया, फिर उन्होंने पेस्ट कंट्रोल किया था। क्या ये आधुनिकता है या आध्यात्मिकता है? भगवान की रचना को हम आधुनिकता समझेंगे या हमने दिमाग के ऊपर चला हुए नॉलेज को आधुनिकता समझेंगे? सोचने की बात है। इसलिए आप भी अपने खेत में थोड़ा सा भी दो, कम से कम एग्रो फॉरेस्ट को जगह दो, एग्रो फॉरेस्ट छोड़ दो, फूड फॉरेस्ट करो, जिसमें एक सीताफल का लगा दो, एक अमरूद का लगा दो, एक पीपल का लगा दो, एक एप्पल का लगा दो। मिलेगा तो खाने का मिलेगा, नहीं तो पंछियां तो खा के जाएगी, लास्ट मोमेंट में अच्छे फल भी तो खाने को मिलेंगे, ऐसा सोच के एक करने का प्रयास हम किसानों ने प्रैक्टिकल में किया है। और रही बात ये पेड़ पौधों से बात है, लास्ट मोमेंट में जब खेती में, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, 2 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। लास्ट में हमें ब्रह्मा कुमारी ने बहुत अच्छी प्रेयर सिखाई, खेती में जाके आप लास्ट में, जैसे हम लोग है ना फसल कटाई से पूर्व फसल की पूजा करते थे और फिर काटते थे, इसने कहा पूजा करने से कुछ नहीं हुआ, खेत में जाके बैठो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, उस फसल का आभार मानो कि आपने सर्दी गर्मी धूप सब सहन करके इतनी अच्छी फसल लाई है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये अनाज जो भी खाएगा ना उसका तन तंदुरुस्त रखने की दवाई आपको निर्माण करनी है, और जो भी खाएगा उसका मन शक्तिशाली बनेगा, ये प्रेयर आपको रोज खेत में बैठ के करनी है। और हम पागल किसान खेत में जाके बैठ के यही एक्सपेरिमेंट करते थे, और जैसे जिसको जिसको ये अनाज खाने को दिया वो लोग आज भी डिमांड करे, यहां तक बॉम्बे के टाटा कैंसर हॉस्पिटल आज भी हमसे डिमांड कराए कि आपके पास ऐसा कोई अनाज है तो हमें सप्लाई कीजिए। तो ये है आधुनिकता। क्या आधुनिकता है? दवाई खाने से ठीक नहीं है, दवाई खाने के लिए लोग आज इतना चिंतित है, तनावग्रस्त है, कितनी दवाई खाए, लेकिन अनाज भोजन करने के लिए कोई चिंतित नहीं, एक बार क्या दो बार भी खाता है, लेकिन भोजन ही अगर सही मात्रा में मिल रहा है तो दवाई का काम कर रहा है। और ये केवल किसान ही कर सकता है। सारे हॉस्पिटल कोरोना काल में बंद थे, लेकिन किसानों की जो हॉस्पिटल है वो बंद नहीं थी, वो बेचारा सबको खिला रहा था। ऐसे ही लास्ट तक किसान आपको खिलाएगा, बस उस किसान को थोड़ी सी हिंट दे दो भावना से कि आप फसल से बात करो, बीज से बात करो, पेड़ पौधों से बात करो, और ये टेक्नोलॉजी को हमें ले जाना है जो आगे चलकर बिल्कुल समाप्त ही नहीं होने वाले। आगे की टेक्नोलॉजी क्या है आपको पता है? AI टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। हमने एलॉन मस्क का एक वीडियो देख रहे थे, इतना डर से भयभीत हो गए हैं बेचारे कि ये AI टेक्नोलॉजी पता नहीं मनुष्य को कब खत्म कर देगी। ये न्यूक्लियर वार की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन AI टेक्नोलॉजी बहुत घातक है बोलते हैं। लेकिन हमारी ये AI नहीं, आत्मा की टेक्नोलॉजी है, परमात्मा की टेक्नोलॉजी जो है, बहुत सिंपल विधि से, कोई खर्चा नहीं है, रोज 10 मिनट मेडिटेशन में रियलाइज करना है, और जो रियलाइज करते हैं उसी का योगदान स्वयं को देना है, प्रकृति को देना है, खेती को देना है, बीज को देना है। तो ये है आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय। मेरे जैसे हजारों किसान प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, और आपको यहां से जाने के बाद किसानों के लिए इतना ही बोलना है कि आप भी भले एज अ टॉनिक, शुरुआत में एक कंसेशन उनको दे दो, एज अ टॉनिक के रूप में आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, लेकिन धीरे धीरे टॉनिक कब तक लेते हैं? आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कमी है तो कब तक आप टैबलेट लेंगे? भोजन के बाद ही लेंगे, भोजन बिना भोजन 10-15 टैबलेट की उल्टी एट ए टाइम खाएंगे तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक इसी तरह खेती को भी गोबर की खाद देनी पड़ेगी, जो बेसल डोस है, आजकल गोबर खाद नहीं मिलते, हमने बेसल डोस स्मॉल स्केल में बनाया, उसको शक्तिशाली कैसे बनाना है वो भी विधि किसानों को सिखाते हैं। तो बेसल डोस के साथ आप लोग अगर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करेंगे तो चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन एक साल बाद ये भी आपको बंद करना होगा, और जो विधि हम सिखाएंगे उसको करना शुरू कर दो। प्रोडक्शन कम आएगा तो जिम्मेवारी हम लेंगे, लेकिन मेडिटेशन की विधि आपको पक्की करनी है, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अनुभव जो एक किसान के नाते मैंने अपने जीवन में किया है, वो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। किसी की भावना को कोई स्पर्श हुआ होगा तो माफी चाहता हूं, लेकिन आध्यात्मिकता एक संपूर्ण आधुनिकता है, इस बात को आप रियलाइज करके यहां से जाएंगे, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। ओम शांति।
धन्यवाद भाई जी। जैसे जब एक किसान साइंटिस्ट बन जाते हैं तो देखा कितने कॉन्फिडेंटली वो जो बात कर रहे थे, क्योंकि भाई जी बहुत प्रैक्टिकल हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जैसे भगवान भाई है, प्रहलाद भाई है, जैसे कर्नाटक में हमारे लक्ष्मण भाई जी भी थे। इन किसानों ने जो प्रैक्टिकल में अपने खेतों में जो साइंटिफिकली जो योग के प्रयोग किए हुए हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट से ये बात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि ऊर्जा, जब तक हम ऊर्जा को नहीं समझेंगे, ब्रह्मांड में भी ऊर्जा है और अपने अंदर भी ऊर्जा है और परमात्मा की भी ऊर्जा है, जब तीनों ऊर्जा मिल जाती है तो संकल्प, जैसे एग्रीकल्चर में बीज की बहुत महत्वता है, बिना बीज का एग्रीकल्चर नहीं है, ऐसे ही अगर हमारे जीवन को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो जरूर हमने अपने संकल्पों के बीच के ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो जरूर पूरे विश्व को हम बहुत अच्छा भोजन या अनाज हम दे सकते हैं। क्योंकि किसान जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं अपने खेतों में, उसमें प्योर संकल्पों की वाइब्रेशंस हैं जो सारे फसलों में जाती है। जो भी उस अन्न को खा रहा है उसके सारे संकल्प जब बदल जाते हैं, एक तो रोग से भी मुक्त हो जाता है और मन टेंशन फ्री भी हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि हम 30 सेकेंड उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे, सीधा बैठेंगे सभी, क्योंकि अगर हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम इस ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद कीजिए और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे, ऐसे घुटनों के ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे ऐसे हाथ ऊपर और घुटनों के ऊपर, अपने सांसों पर ध्यान देंगे, आंखें बंद, धीरे से सांस अंदर बाहर, अंदर से शांत हो जाइए, शांत शांत हो जाइए। और अपनी एकाग्रता भ्रुकुटी के मध्य, मैं एक ऊर्जा, मैं स्पिरिट, मैं एक शक्ति हूं, भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूं। अब फील करेंगे मेरे हाथों में ब्रह्मांड की परम शक्ति के ऊर्जा आ रही है। पूरा ध्यान देंगे हाथों पर, एक शक्ति मेरे हाथों में आ रही है, मैं फील कर रही हूं उस शक्ति को। अब हाथों को अपने सिर के ऊपर रखेंगे, अनुभव कीजिए इस ऊर्जा को कि मेरे सर से पूरे ब्रेन में, पूरे शरीर में यह ऊर्जा बह रही है। मैं रिलैक्स हूं, ऊर्जावान हूं। हाथ नीचे करेंगे, थैंक यू। आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब हम साइलेंस होते हैं, अध्यात्म पहले शांति की ओर हमें ले जाती है। जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक हम कोई भी एनर्जी को फील नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें बहुत अच्छी खेती करनी है, क्योंकि जहां से मैं एक छोटे से गांव में जहां पे मैं सेवा करती हूं, जब हम अभियान में गए थे तो एक छोटे से गांव में गए थे, एक बुजुर्ग बैठे थे हमारे पास जो 90 इयर्स के थे, तो वो बता रहे थे कि मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक गडरिया रहता था जो बहुत बड़ा कंबल अपने कंधों पर डाल के जब वो निकलते थे सब बकरियों को लेकर, तो एक बार एक किसान ने उसको कहा कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, बारिश की बहुत जरूरत है। तो उसने कहा देखो मैं अभी 2 मिनट में बारिश लाऊंगा। तो कैसे? तो उसने कहा देखो मैं कंबल को ऊपर फेंकता हूं, जब तक कंबल नीचे ना आए तो बारिश आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही उसने कंबल को ऊपर फेंका, जब तक कंबल नीचे न आए तो बारिश आना शुरू हो गई। तो ऐसा एक समय था कि गडरिये का बात पृथ्वी मानती थी, मतलब ऐसा कनेक्शन था कि मनुष्य का, क्योंकि उसके संकल्पों में पवित्रता थी, वो खुद बहुत निस्वार्थ था, तो प्रकृति उसको जो चाहिए वो देती थी। तो हम भी अगर प्रकृति के नजदीक जाना चाहते हैं, बिना अध्यात्म के हम नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहले इस प्रकृति को हमें समीपता का अनुभव करना है। तो हम अभी आगे सुनेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत भाई जी का, जो सारे भारत में, एक मनीषा दीदी है और एक बालासो रुगे भाई जी है, जो शाश्वत योगी कृषि का बहुत अच्छी रीति से प्रसारण कर ले, इनके लिए हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। तो अभी मैं दूसरे अतिथिगण को मैं निवेदन करती हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र भाई जी, प्रोफेशनल क्लाइमेट चेंज, मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि अपने अनुभव को प्रस्तुत करें।
ओम शांति। मंच पे उपस्थित दिव्य आत्माएं और यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। मैं पहले एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। इस सत्र में ये मेरी जगह डॉक्टर सपना नरूला को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, और चंद्रीश भाई ने कहा कि आज बाबा ने आपको डाल दिया है, तो अब वो आपसे जो चाहे वो आप कहिए। तो कोई तैयारी के साथ नहीं आया हूँ, और मेरा जो अभी तक 25-30 साल का अनुभव है, वो जो अभी रुगे भाई ने बताया, उसके आप समझ सकते हैं वो आधुनिकता के चश्मे से भरा हुआ है, पूरी तरह से आधुनिकता में सरोवर। वो मैं अपने अनुभव को, जो रुगे भाई ने एक आध्यात्मिकता की बात की है, कि उस चश्मे से कैसे कहाँ कहाँ के से प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्न को आपके सामने रखूंगा। क्योंकि विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल सारे लेवल पे मैंने सरकार के साथ और प्राइवेट कॉरपोरेट के साथ काफी क्लोजली काम किया है, तो उनके मन में किस किस तरह के सवाल आते हैं, अगर जब इस तरह का व्याख्यान, जिससे 100 वो भी एग्री करते हैं, लेकिन सवाल जो आते हैं वो मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि इस सभागार में जितने जो लोग बैठे हैं, मैं ये मानता हूं वो पूरी तरह से अपने एक कुटुंब के लोग हैं। चुनौती ये है कि ये संदेश और ये प्रैक्टिस जो तमाम लोग बाहर बैठे हैं वहां तक भी कैसे, और खास करके जो निर्णय लेते हैं, जो नीति निर्धारण में बैठे हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। मैं शुरुआत करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। अभी एक बहुत बहुत ही रिसेंटली एक पॉलिसी आई है, उसको वो ये कहते हैं वॉलेंट्री कार्बन मार्केट। अब कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करूंगा जो हम लोगों को, और वो सारे के सारे मैं आधुनिकता के चश्मे से देखा गया और अनुभव किया गया प्रश्न वो रख रहा हूं, और उसको फिर उसका जवाब जो है वो रुगे भाई ने जो पूरा एक्सप्लेन किया वो आध्यात्मिकता में है। बट ये जो गैप है कम्युनिकेशन का, उसको हमारे को समझने की जरूरत है। तो वॉलेंट्री कार्बन मार्केट, इसको बहुत जोरदारी से भारत सरकार जो है अब प्रमोट कर रही है, और आपने अभी व्याख्यान में सुना होगा कि जमीन में आपके ऑर्गेनिक कंटेंट, ओसी आपने यूज किया, वो कितना है। तो ये अपने आप में एक बाजार खड़ा हो गया है कि आपके, अगर आपने ये प्रमाणित कर दिया किसान ने कि पिछले 3 से 5 साल के प्रैक्टिस के बाद उसका ऑर्गेनिक कंटेंट इस लेवल से इस लेवल तक बढ़ा है, तो उसका एक अलग मार्केट है, उसके उसको एडिशनल पैसे भी मिलेंगे, वो भी एक मार्केट है। आधुनिकता जो है वो कैसे, और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने का पूरा तरीका बताया। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारे किसान इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, वो उस मार्केट से जिससे उसको एडिशनल इनकम मिल सकता है, क्या उसका लाभ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा द्वंद है कि जब हम आध्यात्मिकता और कृषि में मार्केट की बात आती है और मेरे पास जवाब नहीं है, मैं एक प्रश्न, इसलिए मैंने कहा ये प्रश्न छोड़ के आ रहा हूं, और उसको भारत सरकार और इवन इंटरनेशनल क्लाइमेट के, जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बहुत जोरदारी से प्रमोट कर रही है। तो हम कैसे उन नीतियों को अपने आध्यात्मिकता के बल पर जो है प्रभावित भी करें और उसका फायदा भी उठाएं, क्योंकि वो पैसे तो जा ही रहे हैं ह्यूज अमाउंट, और आपने देखे होंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं इन्हीं प्रैक्टिस को मोनेटाइज करते हैं, मतलब उस कार्बन कंटेंट को एक साइंटिफिक तरीके से मेजर करके वो उसको बेचते हैं और उसका एक भाग हमारे किसानों को देते हैं। तो ये जो आधुनिकता जो डिमांड करती है कि आप जो कह रहे हैं उसको आप अगर डेटा के आधार पे प्रमाणित कर दें, और जो मार्केट डिमांड करता है कि भाई हमारे को ये चीजें दिखाओ तो हम इसका एडिशनल पैसे भी आपको देंगे, क्या हमें उस ओर प्रयास करना चाहिए? एक प्रश्न है, नहीं तो उसका फायदा लोग तो उठा ही रहे हैं, मेहनत हमारे वो किसान कर रहे हैं जो कि इनके पास छोटी भूमि है, लेकिन फायदा जो है मैक्सिमम जो है वो आधुनिकता के जो टर्म्स और आधुनिकता के जो नैरेटिव हैं जो उसको यूज करके बेचा जा रहा है। अब उसके लिए जरूरत है डेटा की, तो मैं आधुनिकता के तीन या चार पैरामीटर पे बात करूंगा और क्या हम उस चुनौतियों को अपने इस प्रैक्टिस के साथ अगर हम जोड़ लें तो शायद वो विन विन सिचुएशन हो। पहली चीज जो है, अगर आप कहते हैं जितनी भी बातें कहीं साइंस ये डिमांड करता है कि भाई आपके पास वो सिस्टमैटिक डेटा हो, है ना, और एक टर्म और सीखने को मिला, वो कहते हैं आपका MRV सिस्टम जो है, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कितना रोबस्ट है, इस पे आपके बात की सत्यता को जांचा जाएगा। आपका अनुभव ठीक है बट जो आधुनिकता का जो ये वर्ल्ड है वो डेटा की डिमांड करता है, और वो भी डेटा जो अगर क्लाइमेट के नैरेटिव से आज की डेट में अगर आपको उसको उसका फायदा लेना है तो कम से कम पिछले 30 साल का डेटा। और मुझे लग रहा है कि ये जो शुरुआत हुई है और यही प्रयास यहाँ पे तपोवन में चंद्रेश भाई के साथ ही चल रहा है कि जो मॉडल बना है सिस्टमैटिकली अगर आज से हम वो डेटा कंपाइल करें, उसको एनालाइज करें, तो आज से 10 या 20 या 30 साल के बाद हमारे पास एक डेटा बेस होगा जिसमें हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डेटा अपने आप बोलेगा कि देखो हमने जो है ना शुरू में चाहे मिट्टी की ये स्थिति थी, प्रोडक्शन ये था, और धीरे धीरे जो आपके फ्लक्चुएशंस प्रोडक्शंस में आ रहे हैं वो कैसे ओवरकम करके इतनी सारे जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जो भी चुनौतियां हुई उसको ओवरकम करते हुए ये मॉडल हमारा बहुत इफेक्टिव मॉडल है। तो अभी इस शायद कल के सत्र में और कुछ और साथी आ रहे हैं उनसे यही बात हो रहा है कि क्या हम एक इस तरह का एक नॉलेज एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी साथ साथ जोड़ें जो जितनी मेहनत जितनी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं एक ग्रुप जो है उसको साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करता जाए और उस पर कुछ साइंटिस्ट जुड़े हैं उस पर पेपर वगैरह और वो हमारे को और भी जोरदारी से करना चाहिए। तो पहला काम तो डेटा का है। दूसरा जो चुनौती जो वहां से जब हम बात करते थे किसी भी फंडर से या इवन मंत्रालय से वो कहते हैं सॉल्यूशंस बहुत हैं, आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए और इसमें इनके इफेक्टिवनेस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बट वो ये कहते हैं कि भाई हमारे को अगर पूरे देश को देखना है तो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हमारे को आप केस स्टडीज ला के दो ह्यूज। तो अभी शायद सिस्टमैटिकली भारत के जितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वहां पे अगर एक एक इस तरह का एक मॉडल हो ताकि हम और जोरदारी से अपनी बात को रख सकें, शायद वहां पे एक गैप है, स्प्रेड है, कहीं कहीं पे लोग कर रहे हैं, प्रमाण हर जगह है बट वो सिस्टमैटिकली हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज शायद वो डेटा आज भी हमारे पास नहीं है। और उसका कारण वही है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जब वो साइंटिस्ट आए और शुरू में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जो उनके प्रश्न थे वो कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने अनुभव किया तो कुछ और हो गया। बट इनके तो सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस देश भर में फैले हुए हैं, उन तक ये बात पहुंचने कैसे पहुंचाया जाए, और उसका तरीका वही है कि हमारे को वो डेटा जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्पेसिफिक जो है इस तरह के डेटा कंपाइलेशन और उसका डिसमिनेशन जो है वो होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है, सॉल्यूशन हम मान भी लें, अब आपको अगर हम गवर्नमेंट को आपको कहीं से भी फंड लेना हो तो उसको कहते हैं कि आप हमारे को प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के दो। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमने अनुभव किया है कि हमारे आज के समय में चाहे किसानों का संगठन भी बन गया है या जो एनजीओज हैं, उनको अगर कहा जाए कि आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल बना दो तो शायद नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, तो अब आज के ये एक विडंबना ही है कि आधुनिकता में सॉल्यूशन को जब तक आप प्रोजेक्टाइज नहीं करेंगे वो फंड नहीं आएगा। हर कोई जो है वो कहता है कि ठीक है आप इसको प्रोजेक्टाइज करो। एक क्लाइमेट प्रोजेक्ट बनाने में उसकी अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं, बट वो एक ऐसा गैप है जिससे कि हम इस तरह के सॉल्यूशंस को लार्ज स्केल पे स्केल नहीं कर पा रहे हैं आज के। तो ये एक दूसरा चैलेंज है कि कैसे इन सॉल्यूशंस के आधार पे हम प्रोजेक्ट बनाएं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तपोवन ने बनाया था नाबार्ड के लिए, लेकिन वो फिर किसी न किसी लेवल पे जाके वो अटक गया। और उसका कारण भी वही है, क्योंकि उसमें वही था कि प्रोजेक्ट बनाते समय जो चीजें वो पूछते हैं शायद वो चीजें अभी टेक्निकली हम लोग उतने इक्विप नहीं है। सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, इसकी स्केलेबिलिटी की बात आती है, तो वो एक दूसरी चुनौती है जो अगर आधुनिक दृष्टि से इस तरह के आध्यात्मिक योग्य कृषि को हमें प्रमोट करना है तो हमारे को ये कला आनी पड़ेगी, ये सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम इन सॉल्यूशन को प्रोजेक्टाइज कर पाएं और उससे फिर हम फंड जनरेट करें और इस तरह की संस्थाएं जो यहां पे लोग बैठे हैं अलग अलग जगह में वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तीसरी चीज जो है जो मॉडर्न क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अगर प्रमोट करने के लिए चाहिए वो बहुत बात हो रही है फाइनेंस की। इवन तपोवन वाले मॉडल में अब ये एक बात जब पिछली बार आए थे ये चल रही थी कि हमें इसका पूरा का पूरा फाइनेंस इनफ्लो और आउटफ्लो का पूरा एनालिसिस एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए 10 साल 15 साल का, कितना हम लगा रहे हैं और कितना हमारे को मिल रहा है। और अगर कोई किसान और उसमें ये बात तो तय है कि शायद ब्रह्म कुमारी और कुछ एनजीओस के पास ये क्षमता है कि वो जो इतनी अनसर्टेनिटी है उसको वो झेल ले जाएं। एक छोटा किसान शायद इतनी एक्सट्रीम और एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, उसमें अगर वो रिस्क ले तो कैसे ले, इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा कि क्या हम कुछ इस तरह के फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि इस तरह के प्रैक्टिस को, आध्यात्मिक यौगिक कृषि वाले प्रैक्टिस को फार्मर्स लेने में और भी कॉन्फिडेंट और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करो, वो भी बहुत लैग कर रहे हैं। वहां पे नए प्रयोग करने की आवश्यकता है, कुछ नए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और कोशिश कर रहे हैं हम लोग सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि शायद वो मेन स्ट्रीम में वो लोन ही देते रहते हैं, बट हमारे को इनको कुछ दूसरे तरीके से इंसेंटिव देने पड़ेंगे, चाहे वो आप गारंटी कुछ फंड बना लो या रिस्क फंड बनाओ कि भाई ठीक है तुम्हारा एक लेवल का इनकम हम मेंटेन करेंगे बट आप इस तरह की कृषि की तरफ बढ़ो, तो शायद किसानों को एक हौसला बढ़े लार्ज स्केल में इस तरफ आने को। और उसके लिए भी कुछ बैंक्स आगे आए, ये जो है क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक कुछ फाउंडेशन जो हैं वो तैयार हैं और ये प्रयोग कुछ स्मॉल स्केल पे अगर हम कोशिश कर पाए कि कुछ इस तरह के फंड बने जिससे कि यौगिक कृषि के को जो इनिशियल हिकअप्स होते हैं छोटे फार्मर्स को हम उसको ओवरकम कर पाए। और चौथी चीज ये है कि शायद आधुनिकता और ये जो यौगिक कृषि को अगर हमारे को प्रमोट करना है तो शायद ये लेक्चर और पावर पॉइंट और ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा नहीं इफेक्टिवली हम इसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हमारे को पूरा का पूरा जो क्षमता वृद्धि का जो तरीका है किसानों को समझाने का, इसके नए नए मॉडल्स लार्ज स्केल पे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बनाने पड़ेंगे। और मुझे बड़ी इस चीज़ की अभी कोशिश चल रही है, कल भी शायद कुछ फाउंडेशन जो है वो जो तपोवन का मॉडल है या जो गे भाई का जो मॉडल है, कैसे जो मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने ट्रेनिंग देने के तरीकों में बदलाव लाएं और इस तरह के कृषि को कैसे वो इफेक्टिवली कैपेसिटी डेवलप कर पाए फार्मर्स की, इस पर बहुत अभी काम करने की जरूरत है। 2 या 3 दिन की जो ट्रेनिंग जैसे हम बुलाते हैं करते हैं वो बहुत इनिशियल स्पार्क तो देता है, बट ट्रेनिंग के बाद जो फॉलोअप होना चाहिए वो कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब किसान वापस चला जाता है खेत में, सर आज की डेट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उस पर भी हम लोग चौथा जो हमारा जो पैरामीटर है जिसपे हम बहुत सिंसियरली और काफी जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम किस तरह से पूरे के पूरे जो है ट्रेनिंग को चेंज करके उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंशियल, बिकॉज सारा का सारा यौगिक खेती जो है वो एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, आप अनुभव करें और फिर उसको आप प्रैक्टिस में लें। आज का जो मॉडर्न ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो बड़ा कॉग्निटिव लेवल पे है, हम डेटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लेक्चर्स के माध्यम से करते हैं, तो ये चौथा आयाम है जिसमें मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है जिससे कि हम यौगिक कृषि को और बढ़ावा दे सकें। मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ, ओम शांति।
डॉक्टर शैलेंद्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। वक्त की रोशनी में ही हर सफर साज है, इसलिए अपनी अंदर की दुनिया को बेहिसार कर लो। ये वक्त की पुकार है कि अब अंदर झांको और अंदर को बदलो। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, अपने आप को वक्त नहीं देंगे, तब तक अध्यात्म को हम नहीं समझ सकेंगे। अध्यात्म, हम खुद ही एक अध्यात्म हैं, लेकिन इसके बिना हम दूर भाग रहे हैं। जब अध्यात्म अपने अंदर आ जाएगा तब हम सब कुछ, जब अंदर चेंज हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का सार ही है, अंदर की खेती को ठीक कर दो, आप खुद एक अच्छे किसान बन जाओ, तब बाहर सारे किसान को भी बदल सकेंगे और प्रकृति को भी हम बदल सकेंगे। जैसे कहा जाता, सृष्टि में जितनी सूक्ष्म होती जाती है, जो शक्ति जितनी सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है, ऐसे ही आत्मा बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल है, जिसको आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ पर जो आपको प्यार मिल रहा है, ये सब सिर्फ अनुभव करना है। इसलिए वक्त हमें कह रहा है, वक्त ने हमें वक्त दिया है कि कुछ अंदर झांको और अनुभव करो। तो मैं अगले वक्ता से आमंत्रित करती हूँ, बीके महेंद्र भाई जी, रुचि एग्रो गोंदिया, ये अपने अनुभव हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। नमस्कार सज्जनों, इसके आगे और एक सेंटेंस है, नमस्कार देवियों और सज्जनों, यह हमने बहुत बार सुना है। आज मैं एक सेंटेंस फिर से इसको दोबारा आपको नमस्ते करना चाहता हूं, नमस्ते देवियों या देवताओं। मैं ये इसलिए कहा कि मैं ये सोच रहा था कि कई बार हम ये समझते हैं कि देवियां तो हैं हमारी बहनें, फिर हम भाई लोग देवताएं क्यों नहीं बन सकते। आज जिस जगह पर आप आए हैं ये परमात्मा का घर है, और यहां वो विधि मनुष्य से देवी और देवता बनाने की सिखाई जाती है। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा सुरेखा दीदी जी, शैलेंद्र भाई जी, हमारे साथी बाला साहब भाई और मंच संचालन करने वाले दीदी, तथा इस सभा में उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिक, चाहे वो अधिकारी हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, या सामाजिक कार्यकर्ता हो या नेता हो, आज आप कृषि वैज्ञानिक के नाते से ही आप यहां आए हैं। दीदी ने कहा कि आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिए, मेरा नाम महेंद्र ठाकुर है और वैसे मैं बाय प्रोफेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं। पढ़ाई लिखाई करके उम्मीद ये थी कि मैं बहुत अच्छे जगह पर अच्छी नौकरी करूं, तो कुछ रिसर्च के बाद कुछ साल तक मैंने मल्टीनेशनल्स में काम किया और काम करते समय कुछ मौका मुझे रिसर्च करने का मिला, तो उस रिसर्च में कुछ ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस मैंने बनाए जो भारत में पहले बार बने थे और वो सारे इको फ्रेंडली थे। और ये करते करते जब ये सिद्ध हुआ कि भारत में पहला फॉर्मुलेशन बना है, इसके पहले वो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कुछ तो किया। इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, गांव से आने के बाद, एकदम ऐसा गांव जहां ना स्कूल था, ना पानी था, ना लाइट थी, ना रास्ता था, उसके बाद अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो खुशखबरी मैंने हमारे पिताजी से शेयर की, तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, पगार भी बढ़ेगी, अच्छा नाम भी होगा और बंबई जैसे शहर में रहने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने एक मुझे सवाल पूछा और वो सवाल था कि आप गांव से आते हैं, आप किसान के बेटे हैं, सारे लोग आपके आजू बाजू के किसान हैं, उस कंपनी के लिए आपने वो प्रोडक्ट तो बनाया, आपने किसानों के लिए क्या योजना बनाई? और वो दिन था 1997 में आई रियलाइज कि मेरी जगह उस मल्टीनेशनल कंपनी में बंबई में नहीं लेकिन गांव के तरफ है। और उस समय मैंने नौकरी छोड़कर मैं गांव के तरफ गया और तब से मैं अभी खेती में काम कर रहा हूं। वो इसीलिए मैंने बताया कि ये कैसे होता है, इसमें आध्यात्मिकता का कनेक्शन है। बचपन से हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और तब से बहुत सारी चीजें हमने इस ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से सीखी। और तब ये रियलाइज हुआ कि ये जो संकल्प दिया गया है ये मेरे पिताजी का नहीं है, ये कहीं उस परमात्मा का आदेश है कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो उस गांव के लिए कीजिए जहां सख्त जरूरत है। और तब 1997 से हम गांव की तरफ गए। महाराष्ट्र में एक शहर है गोंदिया, उसके आजू बाजू के गांव में हमने सोचा कि चलो अब कुछ नया करते हैं। तो वहां चूंकि हमारी पढ़ाई अच्छी थी तो हमने ये सोचा कि हम साइंटिफिक तरीके से ऐसा कुछ करें कि जो लोग परेशान है ना खेती में, उनकी कुछ परेशानियां कम तो कर सकते हैं, कुछ रास्ता तो दे सकते हैं। द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, और हमने ट्रेडिशनल चावल के अलावा दूसरी खेती कैसे की जाए इसके ऊपर काम किया। सोचा वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमारे देश में कृषि में बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। आज तो बहुत सारी इंडियन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है, लेकिन आज के 25-30 साल पहले उनका बड़ा नाम था, तो उनके हमने एग्रोनॉमिस्ट बुलाए, हमने एक पर्टिकुलर एक क्रॉप सिलेक्शन किया और हमने सोचा हमने लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप केले की खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। केला लगाया, सारी चीजें जैसे न्यूट्रिशन देना है, टिश्यू कल्चर के पौधे, किस समय पे कौन सा न्यूट्रिशन देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए, ये सब कुछ करने के बाद में एक समय ऐसा आया कि जिस समय पे फल तो बहुत अच्छे लगे थे लेकिन वो मैच्योर होने के पहले पेड़ ही गिर रहा था और टूट रहा था, और वो भी बगैर हवा तूफान के, और एक नहीं क्योंकि लगाए थे 60 एकड़ में, ऐसे 50 पेड़, 100 पेड़ एक एक दिन बगैर हवा के, बगैर तूफान के अगर गिरने लग जाए और मैच्योरिटी के पहले, तो उस फसल का हम क्या करेंगे। तब हमने उनको फिर पूछा कि भाई साहब हमने सब कुछ तो किया, आपने जैसा बताया क्योंकि वो एग्रोनॉमिस्ट थे वैसा ही सब कुछ किया, फिर भी ये नौबत आ रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, वो मुझे अभी भी याद है, कि भाई साहब देर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी फील प्लांट इज अंडर स्ट्रेस, पौधा तनाव में है जिसके वजह से वो इस तरह से, तनाव बायोटिक अबायोटिक कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके वजह से वो अपने फ्रूट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई गॉट सरप्राइज्ड। इंसान को तनाव हो तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, साइकेट्रिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, पौधों को किसके पास ले जाएं? है किसी के पास कोई उपाय इस सभा में कि अगर पौधा तनाव में है, अगर उसको कोई स्ट्रेस हुआ है लाइफ में, तो उनको उस स्ट्रेस को हम कैसे दूर करें? और तब यह समझ में आया कि जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने की है वो तो बहुत सब कुछ तन मन धन सब कुछ समय लगाकर किया है, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो हम हमारे क्षेत्र के लोगों को कभी कुछ बता नहीं सकेंगे, कुछ गाइड नहीं कर सकेंगे। और उद्देश्य तो हमारा ये था कि हमारे क्षेत्र का परिवर्तन हम करें, उसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तरफ हम लोगों को लेके जाएं। और उस समय फिर वो प्रेरणा मिली कि ऐसे समय पर एक ही चीज बचती है और वो है आध्यात्मिक शक्ति। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में 15 किलोमीटर दूर खेत में हम जाते थे, हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम के दो भाई, मैं और पिताजी, और जाके हम वहां मेडिटेशन करते थे। कुछ नहीं पता था क्या करना, सिर्फ अपने संकल्प देते थे कि ये पौधा जो है ना ये बहुत तंदुरुस्त बनेगा, अच्छा उत्पादन देगा और इससे लोगों का न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और ऐसे करते करते उस वाटर को चार्ज करके उस दिन से हमने उनको जो भी खाद हम रासायनिक देते थे वो बंद कर दिया, सिर्फ पानी चलाते थे। और तब से हमने देखा कि हमारे पौधों का गिरना पूर्णतः रुक गया। और उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के प्रयोग जो है ब्रह्म कुमारीज संस्था में किए जाते हैं। और तब मैं ब्रह्म कुमारीज के कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के साथ जुड़ा। उसके पहले मैं मेडिकल विंग का विद्यार्थी था, उसमें जाते आते रहता था। मुझे लगा ये चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। ये मैंने इसलिए बताया कि अनुभव के आधार पर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास विज्ञान है, उसका एक और उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले हम खेती करते थे, जैसे इसके पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि 50 करोड़ लोगों को भी अनाज नहीं दे पाते थे। आज तो हम 120 करोड़ या 140 करोड़ को भी देने के बाद भी अनाज हमारे पास है, हमारे पास अच्छे बीज है, अच्छे खाद हैं, बीमारी आई तो दवाएं हैं। इतना सारा मेहनत हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया, इतना सब करने के बावजूद क्या किसान की समस्या कम हुई है? कम हुई या बड़ी है? क्या कहेंगे? बड़ी है। मतलब सिर्फ अच्छे बीज खाद और दवाई नहीं, और किसी चीज की जरूरत है जो खेती में हम मिस कर रहे थे, और उस चीज को ढूंढने का काम इस कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने किया। और इसकी शुरुआत, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ये अनुभव के आधार पर हुई है। और अलग अलग जगह पर यह जब रिसर्च हुआ तब फिर इसको फिर अलग अलग भारत के अलग अलग देशों, अलग अलग राज्य में भी इसके प्रयोग किए गए। ये जो विषय है क्या छूट रहा है, जो हमारे खेती में सब कुछ होने के बाद में समस्या कम नहीं हो रही है, तो उसका और एक उदाहरण हम देखेंगे। आप सब लोग यहां ज्यादातर कृषि अधिकारी होंगे और सब लोग कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित जितने भी वर्कशॉप, सेमिनार, आयोजन या ट्रेनिंग सेंटर हुए सब लोगों ने अटेंड किया, चाहे वो भारत सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, कृषि केंद्र हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विद्यालय हो। सबने भरसक प्रयास किया कि किसानों को हम क्या दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सब कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, इसमें हमारे वैज्ञानिक लोगों ने वो चीज करके दिखाई जो असंभव थी और आज हम अपने अन्न धान्य में परिपूर्ण हैं। तो वो चीज जो मिसिंग है उसको ढूंढने के लिए, उसको फिर से प्रस्थापित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार ने अभी जो नई योजना लाई है परंपरागत या हम नेचुरल फार्मिंग की जो बात करते हैं, तो वो नेचुरल फार्मिंग वो पर्यावरण के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं, उसके मदद अगर हम नहीं लेते हैं, तो हम नैसर्गिक खेती नहीं कर सकते। निसर्ग के पांच तत्वों के सहयोग के बिना हमारे खेती में सफलता संभव नहीं है, और यौगिक खेती के माध्यम से वो कनेक्शन प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इसको संबंध जोड़ना, उसके साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना, जिसको हम मेडिटेशन का माध्यम से जोड़ते हैं, इसी को यौगिक खेती कहा जाता है। और ये जो इनपुट है, ये इनपुट आपका कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। हम जो कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के तहत, पूरे भारत में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सारे प्रयास हो रहे हैं, उसमें सिर्फ हम एडिशन कर रहे हैं। और वो एडिशन आप पिछले दो दिनों से सुन रहे हैं कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत हैं। और एक कोट, रिसेंट कोट मुझे याद आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली दिया था कि हमारा लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। याद है आपको? हमारा लक्ष्य बड़ा है और समय कम है, तो हमने उसको सिर्फ उस समय कोरिलेट किया था जब पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंटेंस अभी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे खेती हो, पर्यावरण हो, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास समय कम है। और ऐसे समय पर यहां से जब हम जाएंगे 5 दिन के बाद, तो हमारे लिए ये होगा कि हम यहां से जाने के बाद वहां क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे कृषि से संबंधित किसानों की जो समस्या है, किसान हमारी बातें कैसे सुनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब रसायन का प्रयोग किया गया तो सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी मेहनत जो है ना, वो हमारे अधिकारियों ने और साइंटिस्ट ने की। जब वो कर सकते हैं तो क्या अभी हम फिर से उनको और कुछ नई चीज देना चाहे तो वो नहीं कर सकते? ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज यहां से जाने के बाद वो चीजें हम लोगों तक पहुंचाए, किसानों तक पहुंचाए, जो ज्वलंत समस्या है, जिसका रियलाइजेशन फार्मर आज के समय में कहीं जगह पे या तो कर नहीं रहे हैं, और रियलाइजेशन है तो वो हिम्मत नहीं है, वो संकल्प नहीं कर पाते, वो निश्चय नहीं कर पाते कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमारे पास खेती है, देखने को लोग आते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, कई स्टेट के किसान हमारे पास आते हैं, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग स्टेट के लिए ट्रेनिंग के लिए प्रावधान होता है। तो हमारा चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं कि किस तरह से फसल लगाई जाती है। जिस जगह पर पहले घास नहीं उगती थी तो लोगों के ये डायलॉग थे कि जब हमने खेती शुरुआत की थी कि यहां हमने कोदो नहीं उगाया तो आप सब्जियां क्या उगाएंगे। कोदो इज अ मिलेट जो बंजर जमीन में उग जाता है, जहां रेस की जाती थी जनावरों की, बैलों की, क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते कि ये बंजर जमीन थी। उस जमीन पर आज जो फसल निकल रही है, वो चाहे आप फल लो या सब्जियां लो, चाहे वो केला हो, पपीता हो, ड्रैगन फ्रूट हो या अमरूद हो, इस तरह से कई सारे फसलें जब ली जाती है तो वो एक हमारा मॉडल है। वो जब देखने आते हैं तो वहां बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, अपना रिसर्च भी करते हैं, वहां से कुछ पब्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये जो चेंज है, ये चेंज आता है देखने के बाद। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम दो समस्याओं को लेकर अगर जाएं, जो ज्यादातर हमारे लिए भयावह है, वो है पानी और दूसरा अभी हम चर्चा कर रहे थे ऑर्गेनिक कार्बन की, कि पानी कम होते जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी कम होते जा रही है, न्यूट्रिएंट्स तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन जिस दिन कम हो जाएगा दूसरे न्यूट्रिएंट्स कुछ काम नहीं करेंगे, अभी अभी आपने सुना है। मैं जो प्रैक्टिकली करता हूं तो किसान को कैसे बताऊं, वो क्यों एक्सेप्ट करे मेरी बातों को, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो सुन चुके हैं, बहुत सारी समस्या से किसान घिरा हुआ है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभी हमारे पास एक ही चीज है कि हम उनको ऐसी छोटी छोटी चीजें बताएं कि पानी का उपयोग कैसे हो, ऑर्गेनिक कार्बन महत्वपूर्ण कितना है। मैं एक जस्ट उदाहरण बताता हूं कि हम उनको किस तरह से बताते हैं, समझाते हैं। एक है कि जब कोई चीज आपके फसल अवशेष आप जला देते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, किसान बताता है धुआं निकलता है। कोई चीज जलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जलते समय उसने ऑक्सीजन हवा से लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया, क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, कहता है नहीं। क्या आपको ऑक्सीजन चाहिए, हाँ। आपने जब जलाया तो गर्मी बढ़ी या ठंडी हुई, तो कहता है गर्मी हुई। हम पूछते क्या और आपको तापमान बढ़ाना है, तो नहीं। जब हम उसको जलाते हैं तो जमीन कैसे होती है, जमीन गर्म होती या नरम होती है, गर्म होती है। उस गर्मी में कितने जीवाणु मरते हैं, करोड़ों की संख्या में मरते हैं। तो जब हम करोड़ों जीवाणु को मारेंगे तो क्या पुण्य होगा या पाप लगेगा। ऐसे समय पर ऐसे छोटे छोटे उदाहरण को जब हम देते हैं तो वो लोग आकर प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि आज के बाद इस फसल अवशेष को ना हम जलाएंगे ना बाजू वाले को जलाने देंगे। ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह से छोटी छोटी चीजें, आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास भी बहुत है, हम उस लेवल तक जाए जिस लेवल पे किसान हमारी भाषा समझे, हमारे को एक्सेप्ट करें। विषय और भी है बहुत सारे कि जब आध्यात्मिकता आती है तो बहुत सारी चीजें संभव हो जाती है। मैं एक मिनट में एक उदाहरण दूंगा दीदी और फिर मैं बात को पूरा करता हूं। अभी पूरे भारत में इतने सारे FPO बन रहे हैं। एक विषय आया था कि बायोमास को जलाया न जाए, उससे हम एनर्जी तैयार करें। एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, उन्होंने एक यूनिट लगाया, उनके सारे डिपार्टमेंट के लोग, CSR के लोग, उसके फाउंडेशन के लोग, कंपनी के लोग, सब किसान के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके फसल अवशेष हमको चाहिए, हम उसमें से कुछ जनरेट करना चाहते एनर्जी, जिसको हम बायो CNG का जनरेशन है। उन लोगों ने ये कहा कि किसी कंपनी को हमको कुछ नहीं देना है, ये लोग सिर्फ फंसाते हैं। उनको वापस करने के बाद उनको हमने समझाया, उस FPO को, क्योंकि वो एक बार हमारे पास आ चुके थे, कि ये आपके लिए जरूरत की चीज है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, आप में इसमें जाना चाहिए। और आज वो FPO डेली 150 टन का बायोमास उस कंपनी को दे रहा है जो जलाया जाता था। ये प्रैक्टिकल है कि FPO भी हमारे साथ जुड़ते हैं जब हम उनको निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से उनको हम सहयोग करते हैं। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हैं और ये सारे जो है ये आध्यात्मिकता से ही संभव है। जितना भी जो भी कुछ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पर, वो मैं धन्यवाद करूंगा कृषि और ग्राम विकास प्रभाग का कि उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, जुड़ने के वजह से काम करने का मौका मिला। और आज मुझे सबसे ज्यादा गर्व है कि मैं वो और कुछ न होते हुए किसान हूँ, किसान के साथ में हूँ और किसान रहकर उस किसान की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। इसलिए मैं आपको अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद भाई जी का। पूरे भारत में ऐसे बहुत किसान हैं जो शाश्वत योगिक खेती करते हैं, उनके बहुत सुंदर अनुभव हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय दीदी ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी से, जो जोनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग गोधरा से हैं। खुदा की रहमत है आप, खुदा का नूर है आप, इस महफिल में फूलों का हुस्न है आप, आपके आने से रौनक बढ़ गई है, हमारी इस महफिल की शान है आप, दीदी आप शान है आप। तो दीदी से हम अभी आशीर्वचन सुनेंगे। सुरेखा दीदी।
ओम शांति, ओम शांति। परम कृषक परमात्मा के हम सभी बच्चे मंच पर उपस्थित हमारे शैलेंद्र भाई, बालासु भाई, महेंद्र भाई, ज्योतिबेन और आप सभी, हम बहुत समय से आध्यात्मिकता और आधुनिकता पर सुनते आए हैं। महेंद्र भाई ने भी कहा कि पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति के बिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता और प्रकृति और पुरुष परमात्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप सबने भी ये अनुभव किया होगा कि परमात्मा वो सत्ता है जो समग्र संसार को चला रही है, वो जो करता है वो मानव नहीं कर सकता है। आप सभी ने दो दिन के अंदर बहुत से सारे अनुभव सुने होंगे। आधुनिकता तो समझना फिर भी थोड़ा सहज है, लेकिन आध्यात्मिकता को समझना ये बहुत बड़ी बात है। न सिर्फ समझना लेकिन उसको स्वीकार भी करना, उन जैसा बनना भी, क्योंकि आधुनिकता वो रचना है, आध्यात्मिकता वो नींव है। हमारा भारत देश आध्यात्म प्रधान देश, खेती प्रधान देश, सांस्कृतिक प्रधान देश, भारत देश समग्र विश्व के अंदर जबकि गुरु बनने जा रहा है, तो सोचो ये भारत की महानता पहले भी कितनी न होती। पहले भी अगले वक्ताओं ने ये बताया था कि 50 साल पहले क्या था, कैसे खेती होती थी, कैसे ये प्रकृति पवित्र पावन प्रकृति थी, पहले के लोग कैसे थे, है ना? जो 50 के ऊपर है उन्होंने समझा होगा कितना न आपस में स्नेह प्यार था, भावना थी, दिल का प्यार था या आत्मीयता थी, अपनेपन की भावना थी। और अभी आप समझ सकते हो, देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा की मनसा का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, है ना? वो भी हमने सुना, हमारी आंतरिक संवेदना जो है वो प्रकृति खींचती है, पहुंचती है, हमारे वाइब्रेशंस वो लेती है और उसी अनुसार होता है। पहले जो कहते हैं कि भाई सत्य युग के अंदर या देवता युग के अंदर या पहले फल फूल खेती जो थी बहुत सहज भाव से होती थी, इतनी मेहनत नहीं थी और बहुत कुछ था, संपन्न था। लेकिन समय की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मानव की सत्व प्रधानता खत्म होकर के तमो प्रधानता बढ़ गई है, आपस में भेदभाव बढ़ गया है, भावनाएं सारी खत्म हुई है, आपस में प्रेम खत्म हुआ है, स्वार्थ खत्म हुआ है, इसीलिए उसकी जो इफेक्ट है वो सारी प्रकृति पर पड़ रही है। जो चाहते हैं वो नहीं पाते हैं, चाहते वो नहीं कर सकते हैं। साइंसदानों ने, साइंटिस्टों ने कहीं कुछ इन्वेंशन किया, कहीं कुछ प्राप्ति की, कहीं समाज को दी सुखी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो आखिर रचना है। जब तक वो अंदर नहीं गया तब तक कोई इन्वेंशन नहीं हो सकी है। ऐसे ही अगर हम प्रगति को पाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप पर जीत पानी पड़ेगी। हम बहन जी ने बहुत बार कहा कि भाई अंदर की खेती करो, क्या समझ में आता है, क्या खेती कर सकते हैं? अपने आप को शुद्ध बनाने का, सात्विक बनाने का, अपनी सोच को ऊंचा उठाने का, पॉजिटिव बनने का, रहम भावना बढ़ाने का, जब ये छोटी छोटी बात हमारे दिल में आएगी तो नेचुरल हमारी मनसा की इफेक्ट प्रकृति पर पड़ेगी और प्रकृति फलीभूत होगी। लेकिन उन दोनों के लिए हमें चाहिए ताकत, ऊर्जा। वो कहां से मिलेगी, है ना? आप सब भी दो दिन से विशेष रूप से राजयोग शिविर कर रहे हो, तो उनके अंदर आपको बताया होगा कि एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है, एक ही पालनहार है, वो है सर्वशक्तिवान परमात्मा। जिस परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटने से, संबंध जुटने से हम बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, है ना? इसीलिए अगले वक्ताओं ने तो बहुत कुछ अपने अनुभव के आधार पर बताया कि पहले हम क्या थे और ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद हम क्या बने हैं। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर विशेष रूप से राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जो परमात्मा से संबंध जुटाना सिखाते हैं, जो ऑलमाइटी है, है ना? हमें अभी भी भगवान भगवान क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, दिया जला लिया, पूजा कर ली, आरती कर ली, हमारा काम उतर गया। लेकिन नहीं है ना, जैसे अभी संबंधों की ताकत भी कम होती गई है, भाई भाई से नहीं बनती है, माता पिता से नहीं बनती है, बच्चे बाप से नहीं बनती है, तो अशांति का वातावरण फैल जाता है। वैसे ना हम परमात्मा को जानते हैं, ना उसके साथ संबंध है, ना उसके द्वारा प्राप्ति है, कुछ नहीं। तो ये हमारी राजयोग शिविर सिखाती है कि हम कौन हैं और वो ऊर्जा देने वाला कौन है, वो ताकत कहाँ से आती है, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति भी उसकी बेटी है, प्रकृति को भी हमें शुद्ध पावन सात्विक बनानी है, तो उसका मालिक तो आखिर मानव है। मानव के आधार पर ही प्रकृति है। हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रकृति को पहुंचता है, खेत को पहुंचता है, पेड़ पौधे को पहुंचता है। कहा ना अभी कि पेड़ पौधे के साथ आप दिल से प्यार से बात करो, उसको अपना बनाओ, अपना समझो, तो वो भी हमें बहुत बहुत मदद करेगी। लेकिन वो प्यार है कहाँ? मानो मानो से प्यार नहीं रहा, व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर सकती है, तो पेड़ पौधों से क्या करेगी, है ना? जो जानते ही नहीं है। तो परमात्मा एक वो शक्ति है जो प्यार का सागर है। वो प्यार का सागर परमात्मा हम बच्चों की ऐसी सूक्ष्म पालना करते हैं, हम बच्चों में, हम आत्माओं में वो शक्ति भरते हैं जिससे हम प्रकृति को भी सहज भाव से सत्व प्रधान बनाए चला सकते हैं, हम उसका सुख ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी समय परिवर्तित हो रहा है, है ना? पहले का समय और अभी के समय में आप सब भी ये अनुभव करते होंगे, अभी समस्याओं का ढेर है, समाधान ढूंढते हैं, वो समय भी बीत जाएगा। अभी वो समय आ रहा है जिस समय पर हम सभी एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत पर दैवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, और उसके अंदर हमें बहुत बहुत जरूरी है अपने आप पर जीत पाने की, अपने आप को जानने की, आध्यात्म शक्ति को बढ़ाने की, परमात्मा से प्यार बढ़ाने का, और प्रकृति को भी संभल संभल करके प्यार से, ऐसे जो हमें रीति नीति बताई है, जो अभी नई टेक्नोलॉजी निकली है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये सारा हमारी विश्वविद्यालय सिखाती है। तो नॉलेज एक ऐसी ताकत है जिनसे हम जितना चाहे उतनी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसका भी हमें योग चाहिए, उसके साथ हमारा कनेक्शन चाहिए, वो हमारे जीवन में आवे, हमारा जीवन वो आध्यात्म बने। आधुनिक तो है लेकिन आध्यात्म जीवन बने, श्रेष्ठ जीवन बने, तो उनसे हम अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं और फिर से हम भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। तो परमात्मा कहता है बच्चे नींव तो आप हो, आपको ही करना है ना। किसानों की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके जगत का तात बना हुआ है, सब उसको सम्मान देते, फिर भी उसकी आज परेशानी देखो। उसका कारण है कि वो भी अननोन है। तो उन किसानों की जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए हम सबको मिलकर के ये पुरुषार्थ करना होगा कि प्रकृति से हमारा प्यार कैसे बढ़े, प्यार से कैसे खेता। वो अभी कहा ना कि भाई पूजा पाठ से कुछ नहीं चलेगा, हमारा अंदर से जो शुभ प्यार भरा वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस उसको काम करेगा, तो वो भूमि भी सत्व प्रधान बनेगी, किसान भी समृद्ध बनेगा, किसान के आधार पर हमारा भारत देश भी समृद्ध बनेगा। तो आप सबको विशेष हमारा अनुरोध है कि 3 दिन जो हमारी राजयोग शिविर का 5 दिन है वो किसी भी हालत में मिस नहीं करो, और कैसे वो शक्ति को अपने आप अंदर लेकर के जाओ और बाहर जाकर के उसका विस्तार करो और उसको सुनाओ कि जिनसे हम जल्दी से जल्दी हम सफलता को पाए और सुख समृद्धि को पा सके। ऐसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। मैं एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगी कि एक किसान है जो बहन है, गोवा में रहती है, वो भी शाश्वत योगी खेती का प्रयोग करती है। 30 घंटे में उन्होंने खरबूजा उगाया, तो वहां पे मोर बहुत आते हैं, तो जब भी छोटे छोटे तरबूज बनते थे तो मोर आकर चोंच मारकर उसको खराब कर देते थे। तो यहाँ पे भाइयों से उन्होंने बात किया कि अब मैं क्या करूं, जो अमृत वेला जो 4 बजे का ब्राह्मी मुहूर्त होता है, तो उन्होंने मोर से बात किया, यहां पे बैठ के मोर से बात किया कि मोर आप आओ, क्योंकि ये धरती आपकी है, सब कुछ आपका है, आप आओ, लेकिन आपके लिए हमने 3 रोज छोड़े हैं, आप आओ, आपको जो चाहे आप खा के जाओ, लेकिन बाकी फसल आप खराब नहीं करो। तो रोज ऐसे उन्होंने 2-3-4 दिन उन्होंने जब ये वाइब्रेशंस उस मोर को भेजे, तो वहां पे देखा गया कि मोर आते हैं लेकिन सिर्फ वो 3 रो में वो आके चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो भी जहां पे तरबूजा है एक भी तरबूजा वो खराब नहीं करते हैं। तो ये है योग की शक्ति, ये है संकल्प की शक्ति। मतलब हमारे संकल्पों में अगर परमात्मा की शक्ति जुड़ जाती है, पशुओं को और पंछी जो भी हो और मनुष्य आत्मा तक भी हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथि गणमान्यों का, सुरेखा दीदी जी का मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और लास्ट में हम सभी 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि रेड लाइट प्लीज, कि सीधे बैठेंगे, सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों के ओर ध्यान दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अंदर से रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। अभी धीरे धीरे अपना ध्यान आंखें, भ्रू मध्य,
मैं एक प्रकाशमान चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मुझ में अपार शक्तियां भरी हुई हैं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रिय संतान हूं। अभी सब अपनी अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे, आंखें खोलेंगे, आगे कीजिए हाथ, ऐसे आगे कीजिए और आंखें खोलिए और अनुभव कीजिए, मेरे हाथ में पूरी धरती है और धरती को देखिए कि मेरे हाथ में पूरी धरती है, मैं धरती को दृष्टि दे रहा हूं, मेरी आंखों से निकल रही पवित्रता की ऊर्जा धरती के कोने कोने में पहुंच रही है, वनस्पतियों को, पशुओं को, पंछियों को, सारे मनुष्य आत्माओं को सुख की किरणें में पहुंचा रहा हूं, शांति की किरणें पहुंचा रहा हूं, पवित्रता की किरणें पहुंचा रहा हूं, पूरे धरती के कण कण में शक्तिशाली ऊर्जा पहुंच रही है, मेरे आंखों से निरंतर ऊर्जा बह रही है। सभी उठ खड़े होंगे, सभी उठ खड़े होंगे और हाथ जोड़ेंगे और अपने सामने इमर्ज करेंगे, मेरे आंखों के सामने सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, धरती माता खड़े हैं। मैं उनकी उपस्थिति अनुभव कर रही हूं। दिल से सभी तत्वों का, सभी देवताओं का हम धन्यवाद मानेंगे। दिल से क्षमा मांगेंगे। सभी बोलेंगे I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I love you। सभी मन में कहेंगे, हे प्रकृति, आपने मुझे बहुत सुख दिया है, मैं आज से मन में ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपको दुख नहीं दूंगा। परमात्मा की ऊर्जा मैं आप में फैलाऊंगा, मैं खुद भी खुश रहूंगा, सबको खुशी बांटूंगा, प्रकृति में खुशी बांटूंगा, सभी सुखी रहे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुख भार भवेत्, मा कश्चित् दुख भार भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।